मेरे लिए प्रार्थना करें। मित्रों, शुभ प्रातः है। इस प्रातः यहाँ प्रभु की सेवा में होना एक सौभाग्य है और इस शानदार स्वागत और संगति का अनुभव करना एक यात्री के हृदय के लिए कोई अर्थ है कि उस स्वागत की आत्मा का अनुभव करे। आप जानते हैं ये अभी आपके पास आया है और इसमें कुछ है जो अपना स्थान नहीं देता, और फिर से आराधनालय में वापस आना और अपने धन्य प्रभु की सेवा भी होना। और अब हमारी बालकों को समर्पित करने की सेवकाई है, परंतु मैं सोचता हूँ हो सकता है कि हम इसे कुछ क्षणों में लेंगे। हम ईस्टर के समीप हैं। मैं सोचता हूँ कि ये लगभग 21 के आसपास है। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आना चाहता था कि एल्डरों और भाई नेविल से मिलूं, और लगभग मैं संभव है ये एक अच्छी बात होगी यदि हम यहाँ एक छोटी सी सभा करें ईस्टर की सभा से थोड़ा सा पहले, संभव है आरंभ हो, कहते हैं बुधवार से और रविवार तक, और ईस्टर रविवार को बपतिस्मे की सभा से समाप्त करें, और एक छोटा सा एक सभा, एक आपस में एकत्र होना। ये एक छोटा आराधनालय है जिसमें मेरा पालन हुआ था। ये मेरा पहली और अकेली कलीसिया है, और मैं इन छुट्टियों में वापस आना चाहता था और प्रभु की आराधना करूं आप सबके संग। सारे इससे सहमत होंगे, सोचे कि ये प्रभु की इच्छा होगी। हाँ ठीक है, प्रभु ने चाहा तो ईस्टर रविवार के पहले बुधवार से आरंभ करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है हम खजांची से कहें या ट्रस्टियों से, और उनसे यदि वे अखबार में छोटा सा विज्ञापन यहाँ कहीं दे दें और बालकों को बताएं कि हम यहाँ पर आराधना के लिए हैं, और हम उन सब के साथ छोटी संगति करना पसंद करेंगे। छोटी जैसे एक प्रकार से ये घर आना और तैयारी करें। संभव है प्रभु हमें अपने महान आत्मा का पुनरुत्थान दे इस आने वाले ईस्टर के लिए। ये पतझड़ और वसंत के समान है। मैं सोचता हूँ वसंत एक ऐसा सुंदर समय है जब हर चीज एक नया रूप लेने लगती है और नया जीवन, और हमें पुनरुत्थान का स्मरण होता है। ईस्टर इतने अनुकूल समय में आता है वसंत ऋतु में। यदि हम ध्यान दें, परमेश्वर का वचन सदा ठीक उसकी प्रकृति के संग चलता है और आदि आदि। इसलिए हम, यदि प्रभु ने चाहा, अब हम इसे आरंभ करेंगे। और यदि मैंने कहा वे छोटा वे क्या बदलेंगे अखबार में, और मैं इसे आकर्षक नहीं बनाना चाहता, केवल लोगों को इतना बताएं कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करना चाहते हैं और हमें ये अच्छा लगेगा। जितने भी आकर हमारे साथ थोड़े समय के लिए आराधना करना चाहेंगे, हम सारी कलीसियाओं को अपने साथ पाकर आनंदित होंगे। और आप टेलीफोन पर इस विषय में अपने पड़ोसियों को बताएं और उन्हें बताएं कि हम प्रभु के विषय में बात करने जा रहे हैं और सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। मैं एक प्रकार का अभियान करना चाहता हूँ, यदि ये लोगों को अच्छा लगे और परमेश्वर की दृष्टि में भला हो और तीनों के साथ ठीक हो। मैं सोचता हूँ कि नेविल तिगड़ी इस समय में हमारी सहायता करे, क्या आप सब नहीं चाहेंगे? ये ठीक है, और इसलिए हम देखेंगे कि वे इस रीति से देखभाल कर रहे हैं। यदि प्रभु देखता है कि ये हमारे करने के लिए ठीक है, और इसलिए हम दूसरी कलीसियाओं से गाने वालों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आकर जब हम ये करते हैं हमारी सहायता करें। आपकी कलीसिया के गायक उन्हें पाकर हम प्रसन्न होंगे। देखिए भाई नेविल संभव है एक रात्रि पहले और उन्हें इस योजना में ले पाएंगे ताकि वे हमारे लिए गाएं। हमें गाना गाना अच्छा लगता है। मैं पुराने प्रकार का घर आने का समय पसंद करता हूँ, जहाँ हम एक साथ जमा हुआ करते थे और एनजी होती थी, जहाँ क्या बहन एनजी आज सुबह यहाँ पर है, उसे बाहर लाएं, इसलिए वो और बहन ग्रेटी घर आने का समय गा सकती हैं, हमारे लिए एक बार गा सकती हैं और थामे रहना। और ये वैसा ही प्रतीत होगा जैसे बेदारी फिर आरंभ हो रही है। बहन ग्रेटी, नदी का पानी बहुत नीचे उतर गया है जब हम इसे यहाँ गाया करते थे। कल मेरा जन्मदिन था और मैं जानता हूँ कि अब मैं लड़का नहीं रहा। मैंने कहा मैं अब 24 पार कर चुका हूँ, इसलिए, और ये मेरे वर्ष रहे हैं, मेरे व्यवहारिक जो है मैं उन्हें नहीं गिन रहा हूँ। शरीर से जन्म लिया और भौतिक, मैं तो बस अपने आत्मिक वालों को गिनता हूँ। आपने देखा लगभग 24 वर्षों पहले मैंने नया जन्म लिया, और वो अनंत है, और ये एक महान धन्य जन्मदिन था, और ये बात निश्चित है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ बहन ग्रेटी, यदि वो इसके पहले कि हम छोटे बालकों को समर्पण के लिए लाएं। अब बहुत बार बाइबल में मैं जानता हूँ केवल एक स्थान पर हम पाते हैं पवित्र शास्त्र में जहाँ बालकों की विधि है। बहुत से लोग उन पर पानी छिड़कते हैं, आप जानते हैं, और इसे बपतिस्मा कहते हैं और आदि आदि, जो कि जो भी है ठीक है। परंतु मैं सदा यही यत्न करता हूँ कि जैसा बाइबल कहती है उसी के साथ बना रहूँ। आप जानते हैं बाइबल में उन्होंने कभी भी छोटे बालकों को बपतिस्मा नहीं दिया, न ही उन पर छींटे मारे। वे बस उन्हें हमारे प्रभु के पास लाए और उसने उन्हें अपनी गोदी में लिया और उन्हें आशीषित किया और कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब एक अद्भुत बात है कि मैंने अपनी बाइबल खोली ठीक वहीं जहां मरकुस 10 है, ठीक यहां, ये मेरे सामने है। और इसलिए प्रभु छोटे बालकों को लाए, वे छोटे बालकों को उसके पास लाए और बस उसने उन्हें आशीष दी और कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने से मना ना करो और उन्हें मत रोको, क्योंकि राज्य ऐसो ही का है। अब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु महिमा में चला गया और उसका आत्मा कलीसिया में वापस आया है ताकि संदेश को ले चले। जब तक कि वो फिर नहीं आता, हम इस बात की राह देख रहे हैं। और जिस रीति से हम यहाँ करते हैं, केवल छोटे बालकों को लाते हैं और कलीसिया के एल्डरों को बुलाते हैं, और मैं इन बालकों को लेकर और उन्हें प्रभु को समर्पित करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसी अच्छी छोटी सेविकाई है इन छोटे छोटे बालकों को देखना, क्योंकि कोई मतलब नहीं कि हम कितने छोटे हैं, हमारी क्या आयु है, ये छोटों ने हमारे हृदय में स्थान पाया है। क्या ये ठीक बात है? अब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के हृदय में स्थान पाते हैं। हम उस अवस्था को कभी नहीं छोड़ते, हम सदा छोटे बालक हैं। जब अब्राहम 99 का था, परमेश्वर के लिए वो छोटा बालक ही था। परमेश्वर ने उसे बताया, कहा, मैं वो स्तन हूँ जिससे अब्राहम तेरा पालन होता है, देख मेरी ओर झुका रहे और पी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने अब्राहम को फिर से युवावस्था में बदल दिया, केवल अपने वचन में पकड़े रहा। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमने उन्हें भीतर लेकर आओ गाया है, और आप अपने बालकों को यहाँ लेकर आए, आप जो उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। मैं एल्डरों से कहूँगा यदि वे भी सामने आ जाएं, ठीक है। उन्हें भीतर लाओ, उन्हें पाप के मैदान से भीतर लेकर आओ, उन्हें भीतर लाओ, उन्हें भीतर लाओ, उन भटकने वालों को भीतर लाओ। ओ, इन छोटे छोटों को देखना मुझे कितना अच्छा लगता है। अब तुम्हारा क्या नाम है? इसका क्या नाम है? छोटी शेरन लुईस रिडल। और मुझे निश्चय है कि हम सब भाई और बहन रिडल से प्रेम करते हैं। हम यहाँ भाई रिडल को जानते हैं, वो यहाँ नगर में जूते की दुकान चलाते हैं और उनके पास यहाँ सबसे सुंदर बालक है, छोटी शेरन, शेरन लुईस रिडल। ये कितने वर्ष की है? और बहन और भाई रिडल, 4 महीने। ओह, ये तो हृदय की मूरत है, क्या नहीं है? और अब प्रभु ने आपको ये छोटी प्यारी सी दी है और अब आप इसे उसको समर्पित कर रहे हैं, उसके गोद में दे रहे हैं। वो परमेश्वर जिसने आपको दिया, आप उसे वापस कर रहे हैं, उसे वापस दे रहे हैं ताकि वो छोटे से जीवन को आशीषित कर सके और इसे सेवा का जीवन बना दे और उसे एक बनाए। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसे एक ऐसा बालक बनाएगा जिससे आपका हृदय आशीषित होगा जब आप बूढ़े हैं। और यदि यीशु देर करता है और परमेश्वर का महान कार्यकर्ता बने और आप इस छोटी लड़की पर घमंड करें, होने पाए प्रभु इसे प्रदान करे जैसा कि हम इसे आशीष करने के लिए लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सारी महिलाएं और पुरुष भी इस अच्छी छोटी बालिका को देखें। क्या ये प्यारी नहीं है, छोटी शेरन? अब हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, अमूल्य वचन में हम पढ़ते हैं, वे छोटे बालकों को आपके पास लाए ताकि आप उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीषित करें। और अब ये जोड़ा इस प्रातः ये पवित्र बंधन जो कि उनके विश्वास में दिया है, ये सुंदर बालक छोटी शेरन रिडल। और हम प्रार्थना करते हैं प्रिय स्वर्गीय पिता कि आप इस छोटे बालक को आशीषित करेंगे जैसे कि ये इस समर्पण के लिए यहाँ आ रहे हैं। बालक को उसी के पास वापस लाते हैं जिसने ये दिया है, और मैं तुझसे मांगता हूँ परमेश्वर उन्हें आशीषित करें, उनके जीवनों को आशीषित करें और होने पाए ये छोटा बालक जिए बढ़े और स्वस्थ रहे और आपका सेवक बने, और ये एक ऐसी महिला बने जो कि परमेश्वर के हृदय को भाए और माता पिता के हृदय को प्रभु से प्रदान करे। और अब आपके एल्डर के समान इसका हम तेरे लिए पालन पोषण करें। मसीह के नाम में इस बालक को आशीषित करें और ये जिए और बढ़े और मजबूत बने और स्वस्थ हो और परमेश्वर का सेवक, जैसे कि हम इसे तेरे सामने प्रस्तुत करते और तुझसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्यारी छोटी, तुझे आशीष मिले, तू बहुत ही सुंदर छोटा बालक है। परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे और इस लड़की के पालन पोषण में आपको बहुत आनंद मिले। हम आनंद करते हुए आएंगे फूलों को भीतर लाते हुए, फूलों को लाते हुए, फूलों को भीतर लाते हुए, हम आनंद करते हुए आएंगे फूलों को भीतर लाते हुए, फूलों को भीतर लाते हुए, फूलों को भीतर लाते हुए, हम आनंद करते हुए आएंगे फूलों को भीतर लाते हुए। क्या तब ये अद्भुत ना होगा? अब हम एक क्षण प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। ओ परमेश्वर, जिसने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया और अपनी सांस को अपने वचन के साथ जाने दिया और हर चीज ने अपने सही स्थान को ले लिया, पृथ्वी, चांद और सितारे सब स्थान में झूल गए जैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन को बोला। और ओ परमेश्वर, आज हम आपसे मांगते हैं कि आप अपने वचन को बोलेंगे जैसा कि हम इसे लोगों के पास लाना चाहते हैं, ये अपनी स्थिति में ले ले इस प्रातः इसका स्थान और जड़ पकड़े और प्रत्येक हृदय में बोया जाए, ताकि हर व्यक्ति जो यहाँ है आपकी आशीषों को ग्रहण कर सके। प्रभु उनकी सहायता करें जो मार्ग से भटके हुए हैं, अपनी आत्मा में अपाहिज और लंगड़े, और जो आपको एक प्रेमी बचाने वाले के समान नहीं जानते, जैसे कि हमें सौभाग्य मिला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप इन्हें बहुतायत से आशीषित करेंगे और होने पाए जब ये इस भवन को छोड़ते हैं तो मसीह को नया पाकर प्रसन्न और आनंदित होते हुए जाएं, कि वे इस सभा के चलते उससे परिचित हो गए। यदि कोई है जो संसार की चिंताओं में पिछड़ गया, ओ परमेश्वर उन्हें वापस ले आए, और बीमार और जरूरतमंद पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज आप हर एक बीमार को चंगा करेंगे, थके हुओं का साहस बढ़ाएं, और जो ईमानदारी में बने हुए हैं उन्हें आशीषित करें, प्रभु से प्रदान करें, आपका आत्मा सब पर हो। जैसे कि ये वचन आगे बढ़ता है, इसे आशीषित करें, वो उपदेशक जो इसे बोलेगा और सुनने वाले जो इसे सुनेंगे, और कुल मिलाकर इस प्रातः इस झुंड से आपको महिमा मिले, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मुझे उन लंबी सभाओं से अभी विश्राम नहीं मिला है जो कि अब 4 महीने से चल रही थी, और ये अंतिम 5 सप्ताहों की सभा बहुत ही थका देने वाली थी, क्योंकि समस्त राष्ट्र में हमारी बहुत ही शानदार सभाएं हुई, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक सारा राष्ट्र इधर उधर आगे पीछे, जैसा कि हमने पार किया और प्रभु ने बहुत बहुत सैकड़ों लोगों को बचाया। गत रविवार केवल 1 सप्ताह पहले हमारे धर्मीय स्वर्गीय पिता ने, मैंने देखा 1000 से 1500 लोगों ने कैलिफोर्निया ऑकलैंड की बड़ी रंगशाला में वेदी पर प्रायश्चित किया। ये ठसा ठस भरा हुआ था और हमें ठीक बीच में बैठना पड़ा बजाय रंगशाला के एक और प्रभु ने आशीषित किया। और जैसा कि आपने सुना है वहाँ बड़ा भूंडोल हुआ और मेरी पत्नी ने पहली बार अनुभव किया। इसके पश्चात वो सहमी हुई थी और ये बहुत तेज था। इमारत हिल गई और धूल उड़ी और बोतलें जो और हम दवा की दुकान में खड़े हुए घर चिट्ठियां डालने के लिए पोस्ट कार्ड ले रहे थे और बोतलें हिली और चिमनी गिर पड़ी और बड़ी बड़ी इमारतें एक साथ हिली, सड़कें फटकर खुल गईं और उसका कुछ भाग नीचे बैठ गया और इससे हमें याद आया कि दीवार पर हस्तलेख है, जगह जगह पर भूचाल आएंगे। उसे एक दिन में उसी नगर में 8 भूचाल आए और तब उस रात्रि लगभग 8 बजे हम अंदर गए ही थे यानी 10:30 और लेट गए थे और लैंप बीच फर्श पर रखा था, दूसरे बड़े भूचाल से जैसे झूलने लगा। ये दिखाने जा रहा था कि हमारे नीचे 8000 मील वहाँ लाल लावा को छोड़ और कुछ नहीं है। और ये उसी समय था कि समुद्र पार आक्रमण को सुना था जो कि कह रहे थे कि लोगों को स्कैंडिनेवियन और आदि जाने से लोगों को रोक रहे थे और वे उन्हें परमाणु हथियारों से नाश कर देंगे। और हम आश्चर्यचकित थे कि क्या होगा यदि वे इन बमों को गिराना आरंभ कर देंगे और पृथ्वी के उन स्थानों को नष्ट कर देंगे, जबकि वे वही करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है कि ये करेंगे। कोई पानी नहीं इस बार, केवल आग। इसलिए प्रतीक्षा करने वाले हृदय के लिए ये एक आनंद लाता है जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है और वो धन्य घड़ी जब ये पुरानी घृण देहें बदल कर उसकी अपनी महिमा युक्त देह के समान हो जाएगी और हम उसे देखेंगे। संघर्ष समाप्त, कोई दुख नहीं, बुढ़ापा समाप्त, सीमित दिन समाप्त, भूख समाप्त, कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं। ओ, हम इसे भली भांति नहीं समझ सकते। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ ये कठिन है क्योंकि हम मनुष्य हैं और मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका सामना करने से हम सब घृणा करते हैं, परंतु ये धन्य छुटकारा है, ये धन्य चीज है ये जानकर कि किसी दिन वो आएगा और ये चीजें बदल जाएंगी। अब स्मरण रखें और अपने उसमें विशेषकर आपके पापी मित्रगण अब सभा में आने के लिए ये बेदारी आ रही है। अब थोड़ा सा बोलते हुए मेरा गला, जैसे कि मैंने कहा, अभी तक सही साफ नहीं हुआ है और मैं अभी भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ, परंतु इस सप्ताह मैंने विश्राम किया है, यहाँ तक कि टेलीफोन से भी अलग रहा हूँ और सब बातों से, ताकि कुछ दिनों का आराम मिल सके और फिर इस आने वाले सप्ताह में मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ यदि कर सका, और तब छोटी बेदारी के लिए तैयार हो जाऊँ, तब कनाडा जाऊँ और कनाडा से वापस इंडियानापोलिस और फिर इंडियानापोलिस से शिकागो और शिकागो से ये मसीह व्यापारी लोगों की अंतर्राष्ट्रीय सभा, और उन्होंने मुझे बुक यानी सुरक्षित कर लिया है। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें और विशेषकर बेदारी के समय कि परमेश्वर मेरा निर्देशन करेगा। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जून से आरंभ करनी है और नवंबर या जुलाई में वापस, और ये यूरोप, एशिया और सारे द्वीपों और समुद्रों और पश्चिमी किनारे से होते हुए वापस पूर्व को छोड़ और संसार का चक्कर लगाकर वापस पश्चिम, इस प्रकार एक आवश्यक समय है। और अब वहाँ कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा रोकता है, मैं नहीं जानता कि कुछ मार्ग में है या क्या है, मैं नहीं जानता, परंतु आप मेरे लिए प्रार्थना करें और निश्चय ही परमेश्वर ठीक कर देगा। अब मेरे पास पवित्र शास्त्र से दो स्थान है जिन्हें मैंने इस प्रार्थना पढ़ने के लिए चुना है, इस कारण से लोग प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे हैं। ये थोड़ा सा समय है कि बीमारों और आवश्यकता में लोगों के लिए प्रार्थना करें, और मैं वचन से थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। तब हो सकता है यदि प्रभु ने आज रात्रि चाहा, केवल सिखाऊंगा ही नहीं परंतु वचन से थोड़ा प्रचार करूँगा। अब मैं दो स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ और ये दोनों पुराने नियम से हैं। एक गिनती 13वां अध्याय और 30वां पद और दूसरा यहोशू का 1 अध्याय और 9वां पद। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मंशा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें। और फिर यहोशू में 9वां पद 1 अध्याय, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु अपनी आशीष अपने वचन पर दे। मैं बस वचन से प्रेम करता हूँ, और यदि मैं इस विषय के लिए कहूँ इस प्रातः, मैं इस विषय को यहाँ ढूंढना चाहता हूँ, एक मूल पाठ, परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है। अब ये हम इस पर सप्ताहों तक रह सकते हैं, पूरे वर्ष की बेदारी हो जाए और अंत तक फिर भी नया का नया जैसे कि ये आरंभ में था। इस विषय के परमेश्वर अपने वचन को स्थिर रखता है। एक बात जो परमेश्वर नहीं कर सकता, क्या आपने इस पर कभी सोचा है? एक बात है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वो ये कि असफल होना। वो सब कर सकता है असफल होने को छोड़कर। इसलिए यदि हमारा बहुत ही पवित्र विश्वास बना है इस प्रातः उस अद्भुत पर, जो कुछ भी कर सकता है, जो होना है सिवाय असफल होने के, तो उसके अनंत वचन पर हमारा कितना विश्वास होना चाहिए। पिछले वर्ष मेरा हृदय हिल गया जब मैंने रास्तों में देखा और देखा कि चीजों का ढेर लग गया है जिस प्रकार वे थे, और छोटा सा वाद उठ रहा है। इससे मुझे याद आया कि उस प्रातः जब हमने समर्पण किया तो उस कोने के पत्थर पर क्या लिखा था, जब प्रभु ने मुझे उठाया। उन दिनों में ये नहीं जानते हुए कि दर्शन क्या था, मैं घर की छत पर चिमनी देख रहा था, 5 या अधिक फीट की, जहाँ मैं बैठा हुआ था जब दर्शन आरंभ हुआ 1933 में, 23 वर्ष पहले, मैं समझता हूँ लगभग 24 वर्षों पहले। इस समय मैं चिमनी को देख रहा हूँ। ये मेरे विवाह होने के बहुत पहले, मैं अविवाहित और घर पर था। हम इस आराधनालय को बना रहे थे और हम कोने के पत्थर को रख रहे थे जब प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया। मैं जाकर खिड़की से बाहर देख रहा था और ये जून में आसपास था और बेलें यानी कलियां खिल रही थीं, और ऐसा लगा मैं चलता हुआ बाहर चला गया या कुछ, और मैंने प्रभु यीशु को देखा और अपने आराधनालय को देखा, और उसने मुझे घोषित किया कि ये आराधनालय मेरा नहीं, और मुझे आकाश के नीचे ले गया। आप में से बहुत से दर्शनों को जानते हैं क्योंकि ये लिखा गया और प्रकाशित किया गया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि चौथा या पांचवा संस्करण, 100,000 किताबें 17 विभिन्न भाषाओं में भेजी गई हैं, और देखिए कि ये कैसे घटित हुआ। वचन दर वचन कभी भी असफल नहीं हुआ। कैसे हम लोगों के छोटे प्यारे से झुंड में आ गए, और कैसे प्रभु ने हमें आशीषित किया और एक स्थान से दूसरे स्थान, परंतु अंततः सुसमाचार फैलाने के क्षेत्रों में, और अब समस्त संसार में ये कैसे चला गया, और कैसे ये समय आ गया कि ये बातें घटित हुई। कैसे संसार में शिक्षकों का ढेर लगेगा, खुजली वाले कानों के साथ, और सत्य को अस्वीकार किया जाएगा, और कथा कहानियों की ओर मुड़ गए। और तब उसने कैसे कहा, वचन प्रचार, वचन पर स्थिर रहे, और यदि मैंने कुछ भी करने का यत्न किया तो वो परमेश्वर के अनंत वचन पर टिका हुआ हूँ। हम संसार के अंतिम भाग में रह रहे हैं। मैं नहीं देखता कि कौन कैसे देख सकता है। जरा अखबार पर दृष्टि डालें या रेडियो चलाएं और प्रायश्चित ना करें। मैं इसे नहीं देख सकता। कैसे हम किसी महान चीज के घटित होने की पूर्व संध्या पर हैं? यहाँ तक कि प्रकृति भी दर्शाती है संसार अधीर हो रहा है। ये अपने ज्वालामुखियों को उगल रहा है, इसे अधीरता में दंडवत कर रहा है। बड़े बड़े भूचाल सड़कों को हिला और फाड़ रहे हैं, और उड़न तस्तरियों के और मिसाइलों के भयवाह दृश्य पृथ्वी पर से निकलते हुए गिर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। राष्ट्र को 5 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। हम अंत समय पर हैं। कुछ घटित, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, केवल एक ही मार्ग है इसमें, और वो ये कि पूरा हो। छुपने के यत्न का कोई उपाय नहीं, एक स्थान को छोड़ कोई छुपने का स्थान नहीं। जैसे कि यहाँ एक छोटी लड़की गाया करती थी जब मैं बस एक युवा प्रचारक था, वे गाया करते थे, यहाँ कोई छिपने का स्थान नहीं। मैं चट्टान पर अपना मुंह छिपाने गया, परंतु चट्टान चिल्लाई कि यहाँ कोई छिपने का स्थान नहीं। परंतु एक छिपने का स्थान है, प्रभु का नाम एक सामर्थ की मीनार है, धर्मी उसमें जाते और सुरक्षित हैं। हम कितने आनंदित हैं कि हमारे पास छिपने का स्थान है इस अंत के समय में। और जैसे कि हम चारों ओर देखते और इन महान चिन्हों को बढ़ते हुए देखते हैं, और इस आती हुई बेदारी को यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं सारी उत्पत्ति में जाना चाहता हूँ, और उन महान विशेष सालों को लाना चाहता हूँ कि हम अंत में हैं और हम यहाँ पर हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वर्तमान पीढ़ी जो इस समय इस पृथ्वी पर है, प्रभु यीशु के आगमन को देखेगी। मैं 48 का हूँ, संभव है मैं ना देखूँ, मैं नहीं जानता, ये कल हो सकता है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ कुछ है जो उस धर्मी के आगमन को देखेंगे, समय का समाप्त होना। और मैं विश्वास करता हूँ हम में से बहुत से, विशेषकर जो इस प्रातः इस आराधनालय में हैं, बूढ़े होकर कभी नहीं मरेंगे जब तक वे एक अति भयावह घटना घटित होते हुए ना देखें, जो कभी लोगों के साथ कभी हुआ हो, वो इस रास्ते में यहाँ घटित होने जा रहा है, ये सत्य है। भाई, हमने अनुग्रह की रेखा को पार कर लिया है और अब न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचा, परंतु धर्मी अधर्मी के संग दंड नहीं भोगेगा। परमेश्वर आएगा और यीशु अपनी कलीसिया को छुड़ा लेगा, और हम उससे मिलने के लिए हवा में ऊपर जाएंगे, और ये किसी भी बम से बहुत दूर होगा या कोई दुख, और उस समय हम सुरक्षित होंगे। इसलिए बाल को जल्द ही अपने परमेश्वर के पास वापस जाओ, किसी भी चीज के लिए संसार में ना उलझे, इस आधुनिक संसार से अलग रहें, इन आधुनिक धर्म विद्यालयों से अलग रहें, केवल परमेश्वर के मेमने को देखें, सारे समय अपनी बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। परेशान ना हो, आनंदित और प्रसन्न रहें, क्योंकि कलीसिया का छुटकारा निकट आ रहा है, जब हम जो हमारे लिए मरा उसे देखेंगे। हमारा विषय एक प्रकार से आज के युग से मेल खाता है। आरंभ करते हुए पहला पवित्र लेख मैं गिनती में पढ़ रहा था, ये लोगों के लिए बोल रहा है जो पास के महान सामर्थी देश से बाहर बुलाए गए थे और उन्होंने अपना दंड पाया था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पाप बिना दंड पाए नहीं बचेगा, चाहे वो राष्ट्र में हो या एक कलीसिया में या एक घर में या व्यक्तिगत, पाप को न्याय के आधार पर देखा जाएगा, किसी और प्रकार से नहीं। ये छुड़ाया नहीं जा सकता, कहें मैंने गलत किया है और अब मैं भला करूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप स्वयं से दोबारा मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि मिलाप तो पहले ही किया जा चुका है। ये स्वीकार करना कि आप गलत थे और तब आकर ठीक हो जाएं। इसलिए पाप के साथ व्यवहार होना ही है, और परमेश्वर पाप के साथ न्याय से व्यवहार करता है। इसी कारण हमारा प्रभु मृत्यु से मरा, जो कि उसने कलवरी पर किया, क्योंकि पाप वो इतनी भयानक चीज थी कि पाप का न्याय उस पर रखा गया, ताकि वे जो चाहते हैं स्वतंत्र हो सकें, उस पर विश्वास करने के द्वारा और उसे पाप की ढाल स्वीकार करने के द्वारा। न कि हम कितने भले हो सकते हैं, परंतु हम कैसे विश्वास करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो हमारे हृदय में आता है, और वही वो अच्छा भाग है। ये उस पर नहीं जो हम कर सके, ये वो जो उसने किया और उसने हमारे लिए क्या किया। यही जहां वो हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारे अपराधों के लिए कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब ये लोग लगभग 400 वर्षों से मिस्र में थे और हम सब इसराइल के बालकों के साथ जो कुछ भी महान बातें हुई उनसे हम परिचित हैं और कैसे वहाँ परमेश्वर ने मिस्रियों को पलटा दिया और उन्होंने उनसे दुर्व्यवहार किया क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा कि वे ये करेंगे। अब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि उसके लोग अनजाने देश में 400 वर्ष तक परदेशी रहेंगे और जब प्रतिज्ञा का समय निकट आया परमेश्वर ने हर चीज को तैयार कर दिया। ओ मुझे ये अच्छा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि उस कठिन समय में उसने एक मिनट की भी देरी नहीं की। वो सदा समय पर होता है यदि हम वैसे हो सकें। ओ हम चीजों को टालने की कोशिश करते हैं, हम अपना समय बनाना चाहते हैं, परंतु हम ये कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने समय में करता है, हम उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। बीते कल अपनी बहन के मकान के पिछवाड़े खड़े हुए जो मेरे पड़ोस में रहती है बहन वुड्स, हम उस छोटे पीपा को देख रहे थे जो पेड़ पर बना था और हवा उसे आगे पीछे हिला रही थी और वो ये बता रही थी कि रेगिस्तान में हवा। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने पीपा के विषय में कोई लेख पढ़ा है। ये छोटा कीड़ा वहाँ अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है ताकि स्वयं को ठंड से बचा सके, परंतु जब समय आता है ये व्यक्ति जो छोटी चीज के साथ कार्य कर रहा था उन्होंने देखा कि वो छोटा पीपा एक घूमने वाला और चारों ओर हिलडुल रहा था और उन्हें इस छोटी सी चीज के लिए दुख लगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे इसके अंत भाग को काट कर अलग कर देंगे और उस छोटे कीड़े को बाहर निकलने देंगे क्योंकि जब वो बाहर निकल कर आता है उसके पंख आने होते हैं। वो उसमें कीड़े के समान था, यह एक छोटे कीड़े के समान वो पंखों के साथ बाहर आता है एक शानदार स्थिति से भी अधिक, और वो हिलडुल रहा था और खींच रहा था, जोर लगा रहा था और यत्न कर रहा था और काट रहा था, उस पीपा से बाहर निकलने का यत्न कर रहा था। उन्होंने उसके लिए दुख का अनुभव किया, उन्होंने सोचा कि वे उसको एक छोटा सरल मार्ग बना दें। उन्होंने एक कैंची लेकर और उसका अंतिम भाग काट दिया और जब उन्होंने उसके सिरे को काट दिया वो छोटा कीड़ा बाहर आ गया, परंतु वो कभी भी ठीक नहीं था क्योंकि उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, उसमें नहीं था, वो अपने पंखों का उपयोग नहीं कर सका। और मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार से हमने नकल करने का यत्न किया, कहा वेदी पर आओ और ये वो या यूं कहो और लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाने का यत्न किया या आराधनालय में या मसीह के पास लाने का और उनको रुलवाया, बस इससे अपना मार्ग निकाला। बस यदि आप उन्हें एक छोटा मार्ग देने का यत्न करते हैं वे कभी भी खड़े होने योग्य न होंगे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि संघर्ष और उस पर कार्य करें जब तक परमेश्वर उन्हें वास्तविक जन्म न दे, उस प्राकृतिक रूप में उन्हें एक वास्तविक जन्म मिले। लोग कहते हैं अच्छा प्रिय मैं सोचता हूँ कि तुमने पर्याप्त प्रार्थना कर ली है, आप वहाँ पर तब तक रुके रहें जब तक उड़ने के लिए तैयार न हो जाएं। केवल यही बात है कि इसे करने के लिए परमेश्वर की एक अपनी विधि है। ओ अच्छा, यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं जाकर कलीसिया के सदस्य बन जाएं। मामा भी उसी कलीसिया में जाती हैं। ये बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु आप जानते हैं जीवन के लिए ये मृत्यु को लेता है और हमें मरना ही है। जब तक कि हम इतने ना मर जाएं कि नया जीवन भीतर आ सके तब हमारे पंख मूल्यवान होंगे और हमारा अनुभव जो हमारे पास है वो दूसरों और अपने लिए मूल्यवान होगा। इसराइल तैयार नहीं था परंतु परमेश्वर तैयार था और उसने मूसा नाम से एक छोटे बालक को जन्म दिया और वो 40 वर्ष की आयु तक वहीं था कि बालकों को बाहर ले आए, परंतु इसराइल तैयार नहीं था और इसी कारण से कि वे तैयार नहीं थे तो उन्हें 20 वर्ष अधिक परिश्रम करना पड़ा या 40 वर्ष अधिक, यही था 40 वर्ष अधिक उन्हें मिस्र में अधिक परिश्रम करना पड़ा जबकि वे 40 वर्ष पहले मिस्र से बाहर निकल आने के योग्य थे। यदि केवल वे तैयार होते, परमेश्वर तैयार था क्योंकि प्रतिज्ञा का समय निकट आ गया था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर स्वर्गदूत भेजा कि लोगों को तैयार करे कि उसका वचन पूरा हो, क्योंकि परमेश्वर सदा अपना वचन स्थिर बनाए रखता है। उसने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों की पीढ़ी को देखा है और मैंने उनका रोना सुना है और उनकी चिल्लाहट को सुना है, उनके काम लेने वालों के कारण, और मुझे स्मरण आया है, मुझे अपना वचन याद आया है, मेरी प्रतिज्ञा। 400 वर्ष बीत गए परंतु परमेश्वर को अब भी अपने वचन स्मरण है। लगभग 2000 वर्ष बीत गए परंतु परमेश्वर को अब भी अपना वचन स्मरण है। मैं फिर आऊंगा और अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिज्ञा का समय समीप आ रहा है। ध्यान दें, जैसे कि वो बोल रहा था और तैयार हो रहा था, और 400 वर्ष बीत गए और परमेश्वर अपने वचन के साथ समय पर था, तब हम ये पाते हैं कि 40 वर्ष देरी होने के पश्चात, और मैं इन शब्दों को कहने के लिए थोड़ा रुक सकता हूँ। अब आप मुझे उल्लेख दे सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वहाँ पीछे टेप हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रभु यीशु का आने का समय तो हो गया है। मैं विश्वास करता हूँ ये तो बहुत पहले हो गया, परंतु ये कलीसिया के कारण है कि उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब यदि आप ध्यान देंगे, उसने कहा जैसे कि नूह के दिनों में था, नूह के दिनों में बाढ़ से पहले ये कैसे होगा, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी नष्ट हो, परंतु ये कि सब प्रायश्चित करें। उसने लंबे समय तक धैर्य रखा, बाढ़ के आने का समय तो बीत चुका था, मिस्र में ये बीत चुका था, क्या आप समझे? अब बाद में नष्ट होना पहला ही होना था, न्याय में नष्ट होना और मिस्र से बाहर निकलना, उसका समय पहले ही हो गया था, 40 वर्ष ऊपर हो गए, परंतु परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने ठान लिया था कि उसका वचन उसके पास वापस नहीं आएगा। वो अपना वचन स्थिर रखने जा रहा था, उसे परमेश्वर होने के नाते ये करना चाहिए। यदि उसे सब चीजें बदलनी पड़े, और अनुग्रह के द्वारा वो इसे करेगा, यही कारण है मैं कहता हूँ, यदि कलीसिया स्वयं को तैयार नहीं करती, तो ये आपका कर्तव्य है कि तैयार हो जाए। दुल्हन ने स्वयं को तैयार कर लिया है, वस्त्रों का भुगतान हो गया है, वो तैयार हैं, परंतु आपको वे वस्त्र पहनने के लिए तैयार होना है। कलीसिया ने स्वयं को तैयार कर लिया है। अब भाइयों सुनो, यदि कलीसिया तैयार नहीं होती, तो परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। यदि ये होलीनेस वाले लोग स्वयं को ठीक नहीं करते और स्वयं को कवच में वापस नहीं लाते सुसमाचार पर वापस, तो परमेश्वर उत्पन्न कर देगा। वो कैथोलिकों को, प्रेस्बिटेरियनों को, या वो जो भी चाहे वो इसे करेगा। ओयो लीमा में कुछ सप्ताहों पहले, आप में बहुत से कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं जो वहाँ थे, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के मध्य में वे वेदी की ओर पंक्ति बनाकर चले। उन्होंने सुसमाचार को स्वीकारते हुए कार्य किया बहुत सी बार से अच्छा। होलीनेस के लोग जो करते हैं, हमने अभी इसे अपने विचारों में लिया है कि हम उसके पवित्र नाम के द्वारा बुलाए गए हैं, और इसे इसी प्रकार जाने दें। ये उसके नाम के कहलाने से अधिक अर्थ रखता है। इसका अर्थ उसके लिए जीना जो आपके लिए मरा, ये एक जीवन है, परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन। ओ, बाइबल पर वापस जाने की हमने कितनी आवश्यकता है। यहाँ कुछ रात्रियों पहले मैं लूथरनों से कह रहा था, जहाँ वहाँ उस सभा में, अब उन्होंने कहा इस प्रकार के, हमें 5 कॉलेज और 2 उन दूसरों में से कि उनमें से 71 ने पवित्र आत्मा पाया उस दिन कॉलेज में जब मैं वहां था। कहा इस प्रकार के 5 और विद्यालय दें और प्रभु 10 वर्ष और रुके, हम सारी लूथरन कलीसियाओं को पवित्र आत्मा से भर देंगे। ओ प्रभु, निश्चय ही परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से वो एक ऐसी कलीसिया को जो बेदाग या झुर्री या दोष के उपस्थित करने जा रहा है, उसका अनुग्रह ही बहुत है और अधिकाई और बहुतायत से कर सकता है। और मैंने कहा, अधिक समय नहीं हुआ कि लूथरनों के पास संसार के लिए मशाल की ज्योति थी? क्या हुआ यदि तुम संसार की ज्योति थे, तुम लूथरनों एक समय पहले सुधार में, तुम्हारे उजाले को क्या हुआ? क्या वो बुझ गया? कारण ये है कि वो बुझ गया क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। आपने इसका विश्वास किया, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहता है जो कि बिल्कुल सत्य है। परंतु इससे भी अधिक कुछ है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। तब मेथोडिस्ट आए, वे तुम मेथोडिस्ट हो, तुमने पवित्रकरण की मशाल उठाई और तुमने महान बेदारी के लिए उस ज्योति की मशाल को उठाया। ये सब सत्य है, परंतु क्या हुआ मेथोडिस्ट कलीसिया को? क्या हुआ? क्योंकि तुमने ज्योति को बुझा दिया, यही हुआ। और तुमने पवित्रकरण का प्रचार किया, अनुग्रह का दूसरा निश्चित कार्य जो कि बाइबल के द्वारा पक्का सत्य है, परंतु तुमने इसे छोड़ दिया। और फिर पेंतिकोस्तल वरदानों की वापसी के साथ आए और तुमने अन्य भाषाएं बोली और फिर तुमने इसको शिक्षा बना लिया, और फिर क्या हुआ? तुम्हारी ज्योति बुझ गई। क्या बात है? क्योंकि तुम वचन के साथ नहीं टिक सके। परमेश्वर का वचन हम खोल रहे हैं और हमें खुलना है। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन खुलता है, जैसे जैसे समय खुलता है, विज्ञान खुलता है। और यदि प्राकृतिक संसार, ये वही मनुष्य है जो 6000 वर्ष पहले बना था जब परमेश्वर ने उसे बनाया, वो वही बुद्धि है, वही बुद्धिमानी, वो वही मनुष्य है, वही 5 चेतनाएं जो हजारों वर्ष पहले था। परंतु देखिए उसने पिछले 50 वर्षों में क्या उन्नति की है। देखिए परमेश्वर के गिरे हुए पुत्र ने क्या किया। उसने वाहन का आविष्कार किया और रेडियो और बिजली का उजियाला और परमाणु बम और जेट जहाज। देखो कितनी जल्दी विज्ञान में पन्ने कितनी जल्दी पलट रहे हैं। परंतु हम पुरानी कलीसिया शिक्षा पर बने हुए हैं और वही टिके हुए हैं, जबकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि वचन को खोलें। हम अंत के दिन में रह रहे हैं, हम उस समय में रह रहे हैं जिसमें परमेश्वर की महान सुंदर कलीसिया को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, घाटी की लिली के समान चमकना। परंतु हम वापस आ रहे हैं कुछ अच्छा। मैं प्रेस्बिटेरियन मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल से संबंध रखता हूँ, मैं ये वो हूँ। ओ कितनी लज्जाजनक बात है, हमें खुलना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा उंडल रहा है, थोड़ा सा बहाव नहीं, ना कि छोटा बपतिस्मा, परंतु बपतिस्मे के बाद बपतिस्मा, ना कि एक प्रकाशन धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है या पवित्रीकरण या पवित्र आत्मा के वरदान, परंतु प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, महिमा से महिमा। क्यों हमें मार्ग में आगे आगे बढ़ना, रूपांतरण के लिए तैयार, और हम पुरानी बातों में पिछड़े हुए हैं और कह रहे हैं अच्छा हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ें। उन इब्रानियों ने कहा, अब यहाँ हमें अच्छा भोजन मिला, यद्यपि हम कठोर परिश्रम करते हैं, और अब हमें वो चीजें मिल गई जो हमारे पास हैं, लहसुन और आदि आदि, इसलिए हम संतुष्ट हो जाएं। परंतु मूसा के पास प्रकाशन था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, उसके पास कुछ और था। वो वापस गया और उन्हें दिखाया कि वही परमेश्वर जो सैकड़ों वर्ष पहले था, वो वही परमेश्वर था, और उसने चिन्ह और आश्चर्य कर्म उनके सामने किए, ये सिद्ध करने के लिए कि वो वही परमेश्वर था। ओ उसका नाम धन्य हो, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। समय अवधि बदल गई, समय बदल गया, लोग बदल गए, परंतु परमेश्वर वैसा ही है, उसे सारे समय एक सा रहना है। उसका वचन अनंत सत्य है, वो उससे बदल नहीं सकता, दहने या बाईं ओर उसे वैसा ही रहना है। तब हम पाते हैं कि क्या हुआ, यहाँ मूसा आता है चिन्हों के साथ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था, मैंने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर ने महान कार्य किए। उसने दिव्य चंगाई का कार्य किया, उसने आश्चर्य कर्म में दूसरे कार्य किए और उसने उन्हें ये दिखाया स्वर्ग का वही परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ। उस अलौकिक के चले जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात उसने दिखाया कि परमेश्वर अब भी जीवित है और परमेश्वर ने उसे भेजा है और कहा, जाकर उन्हें बता कि मैं हूँ ने तुझे भेजा है, ना कि मैं था ने या ना मैं हूँगा ने, मैं हूँ वर्तमान काल। वो मैं था नहीं है। लोग कैसे परमेश्वर का दावा कर सकते हैं और कहते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए और दिव्य चंगाई और सारी आशीषें चली गई और अब भी कहते हैं वो जीवित परमेश्वर है, मैं हूँ है। यदि वो मैं हूँ है तो वो वैसे ही वास्तविक है जैसे वो जलती हुई झाड़ी में था। वो महान नाम जो वहाँ प्रकट हुआ, कोई भी विद्वान अब भी कभी उसका अनुवाद करने में योग्य नहीं हुआ। ये JVHU कोई नहीं, वे इसे यहोवा कहते हैं, परंतु ये नहीं, उसका कोई अनुवाद नहीं कर सकता। क्यों? ये अनंत है। आमीन। वो ज्योति में निवास करता है, वो अनंतता में निवास करता है, वो अमरता में रहता है, सदा का मैं हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास उस दृढ़ चट्टान पर है, आपको कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। जब आपका लंगर उस स्थान में है, तूफान हिला सकते हैं और थपड़े मार सकते हैं, परंतु मेरा लंगर पर्दे के भीतर है। जब एक पुरुष या महिला ने इसमें लंगर डाला और इसे स्वीकार कर लिया है, आपको इस पर से कोई भी कभी नहीं हिला सकता। जैसे कि उनके छुटकारे का समय था और वे इसे देखने में असमर्थ रहे, ऐसे ही छुटकारे का समय है। कलीसिया के आगे बढ़ने की आज्ञाएं निकट हैं। मेरे मित्रों देखिए, उनके पास क्या था, पहले वचन, दूसरा एक भविष्यवक्ता, तीसरा एक दूत उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, सब एक दूसरे से सहमत थे। वे तीनों के तीनों वचन भविष्यवक्ता से सहमत और भविष्यवक्ता वचन से सहमत, स्वर्गदूत उन तीनों में सहमत, वचन भविष्यवक्ता स्वर्गदूत, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार। ओ प्रभु परमेश्वर का नाम धन्य हो, हम अंत के समय में हैं। वचन भविष्यवक्ता और स्वर्गदूत ये सारे तीनों एक साथ हैं, एक महान गवाही। परमेश्वर ने सदा कहा दो या तीन गवाहों के मुख से हर बात तय की जाए, और सच्चा भविष्यवक्ता सदा वचन से सहमत होता है और कोई भी स्वर्गदूत सत्य की गवाही देगा। आमीन। हम आगे बढ़ने की आज्ञाओं के लिए तैयार हैं निश्चय ही। और वो लोगों को बाहर लाया, उनके मार्ग पर उन्होंने भविष्यवक्ता का विरोध करना आरंभ किया, स्वर्गदूत का विरोध और परमेश्वर का विरोध और वचन का विरोध, और वे कष्टों में घिर गए। बाइबल ने कहा उनके संग एक मिलीजुली भीड़ थी, एक मिलीजुली भीड़ बाहर निकलकर आई। ये क्या था? एक अलौकिक कार्य हुआ था वहाँ, अलौकिक कार्य, आश्चर्य कर्म। कोई भी व्यक्ति, एक मनुष्य उस पर्दे के पीछे देखना चाहता है जहाँ से वो आया, और किसी दिन वो कहाँ जाएगा, वो पर्दे के पीछे देखने की इच्छा रखता है। परंतु बहुत सी बार जब अलौकिक कार्य किया जाता है तो वहाँ मिलीजुली भीड़ चली जाती है। लूथर के दिनों में यही हुआ, जब मिले जुले परमेश्वर उनको उसी दिन से उन्हें निकालने का यत्न कर रहा था, और लूथर के दिनों में धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, उन्होंने इसे परखा और कोशिश की और इसे ऐसा ही पाया और मिलीजुली भीड़ गई। और जैसे ही लूथर गया क्या हुआ, उन्होंने कलीसिया को संस्थागत किया और एक बड़ा पुरोहित विधान बनाया, और जब उन्होंने किया तो कलीसिया अपने ठंडे बस्ते में चली गई। फिर जॉन वेस्ली आया, मध्य युग का एक महान सामर्थ्य योद्धाओं में से एक, और उसने आगे कदम बढ़ाया और एंग्लिकन कलीसिया को चुनौती दी, कैथोलिक कलीसिया को चुनौती दी और संसार को चुनौती दी कि पवित्र परमेश्वर ने कहा लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, और वो उसकी प्रतिज्ञा पर बना रहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आश्चर्य कर्मों को लाया। क्या हुआ? एक मिलीजुली भीड़ उसके साथ चल पड़ी, और जब वेस्ली गया तो एक मिली जुली भीड़ भीतर आ गई और इसने क्या किया, कलीसिया को दूषित कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पोतों के भजन की पुस्तक में लहू शब्द भी नहीं था, निश्चय ही। उसके बाद फिर पेंतिकौसल आए और पेंतिकौसल वरदानों को ढूंढने लगे। जैसे ही वे वरदानों पर पहुंचे, पहली बात, पूरे झुंड में सबसे छोटा वरदान अन्य भाषा में बोलना है, ये अंतिम और सबसे छोटा है। परमेश्वर ने उनके साथ अव्यवसायिक चीजों से आरंभ किया और वे उसे भी नहीं थाम सके। यहाँ देखिए, वरदानों की पंक्ति में पहला वरदान बुद्धिमानी है, दूसरा ज्ञान, और यदि आपके पास कोई बुद्धि नहीं तो आप कैसे जान पाएंगे कि ज्ञान का मैं क्या करूँगा। पहले सबसे अच्छी चीज की खोज करो, बुद्धि, और यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप ज्ञान का क्या करेंगे, या अन्य भाषाओं के बोलने के द्वारा, या ये दूसरी चीजें। इसके लिए बुद्धि चाहिए, इसके लिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। सुलेमान ने कहा उसे अपनी माता कहो, ठीक है, परंतु उन्होंने क्या किया, पेंतिकौस्तलों को अन्य भाषा में बोलना मिला और उन्होंने इसे संस्थागत कर दिया और उन्होंने कहा यही है। निश्चय ही उन्होंने किया और एक मिलीजुली भीड़ उनके साथ निकल गई। और आज पेंतिकौस्तलों के साथ क्या हुआ, इसमें दो दल हैं, इनमें से एक जैसे ठंडा, औपचारिक और घमंडी और रूखे जितने इनकी वो हो सकते हैं, और दूसरे एक बड़ा झुंड वाद के पीछे अपने हाथों पर से तेल और पानी बहा रहे हैं और सब चीजें समस्त राष्ट्रों में, और इसे पवित्र आत्मा का प्रमाण कहते हैं, और मेंढक और छिपकलियां और आदि आदि लोगों में से कूद रही हैं, और फिर इन्हें एल्कोहल आदि में रख रहे हैं। कोई भी जानता है कि शैतान के पास शारीरिक देह नहीं है, और यदि यीशु मसीह का लहू एक मनुष्य पर गिरा है तो ये एक शारीरिक देह थी कि मसीह पहले ही आ चुका, और फिर ये गलत है। बाइबल ने कहा जब यीशु आया प्रत्येक घुटना झुकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी। वो होगा, उसका आगमन बिजली के समान होगा जो पूर्व से पश्चिम तक कौंधती है। इस प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी। हम जानते हैं कि ये सत्य है। तब जब हम इन बातों को घटित होते हुए देखते हैं, जब हम उन चीजों को घटित होते हुए देखते हैं, तब हम जानते हैं कि वहाँ मिली जुली भीड़ जो लोगों के साथ चली गई, कुछ समय बाद एक दल एक ओर अति में बढ़ गया, दूसरा दूसरी ओर हो गया, और वहाँ आपकी मिली जुली भीड़ है। अब ये फिर आपकी प्रतिक्रिया है, यहाँ आप आ रहे हैं। और जब इसने ये किया, वे कादेश बर्निया के स्थान में आ गए। जब वे कादेश बर्निया में आए, वो न्याय सिंहासन था जहाँ परीक्षाएं होनी थी। ओ, यदि आप इसे समझ सके, छोटी कलीसिया। अब इधर उधर से हम एक क्षण के लिए दबाव देना चाहते हैं। अब ध्यान से सुने, कादेश बर्निया परीक्षा का समय था, और प्रत्येक बालक को जो परमेश्वर के पास आता है उसको परखा ही जाना है, कोई अपवाद नहीं। परमेश्वर जो बालक उसके पास आता है उसे जांचता और परखता है, क्या ये ठीक बात है? बाइबल कहती है वे हैं, और जैसा कि हम देखते हैं जब वे परीक्षाएं आती हैं और विपत्तियां, राष्ट्रों के लिए परीक्षा का समय आता है। और अब मैं ये कहता हूँ कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, परमेश्वर अपने देश को चलाता है, वो इन राष्ट्रों को नहीं चलाता, शैतान इन्हें चलाता है। उनमें से प्रत्येक, बाइबल कहती है वे करते हैं, शैतान हर राष्ट्र को चलाता है। ध्यान दें, जब राष्ट्रों की परीक्षा का समय आता है, जब इसराइल की परीक्षा का समय आया तो असफल रहा, जब उसने ये किया तो परमेश्वर ने उसे बाबुल की ओर मोड़ दिया, एक राष्ट्र के समान वो असफल रहे। और जब रोम के लिए परीक्षा का समय आया तो वे असफल हुए, जब ग्रीक के लिए परीक्षा का समय आया तो वो असफल हुए, जब फ्रांस के लिए परीक्षा का समय आया तो वे असफल हो गए, जब रूस के लिए परीक्षा का समय आया तो वे असफल हो गए। सुनिए, और मैं ये आदरपूर्ण हृदय से परमेश्वर से कहता हूँ, अमेरिका के लिए परीक्षा का समय आया और वो असफल रहे। सुसमाचार पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक प्रचार किया गया, उन्होंने हर जगह को छान दिया, दरार और कोना, एक महान बेदारी हुई, बिली ग्राम की और जैक शुलर और ओरल रॉबर्ट की, और ओ वे उनमें से सैकड़ों ने हर जगह और दरार और कोने को छान दिया। शैतान टेलीविजन को सामने लाया और तब परमेश्वर ने इसे चारों ओर कर दिया कि मनुष्य इस टेलीविजन पर आए, और शराब खाने का प्रत्येक शराबी या वो जहां कहीं भी हो बिना बहाने के खड़ा होगा। जी हाँ श्रीमान, परखने का समय आ गया है। मैंने आपको इस प्रचार मंच से क्या बताया है? पिछले वर्ष अमेरिका ने अपनी भाग्य निर्णायक गलती की है। मैंने कहा भाग्य निर्णायक गलती निश्चय ही उसने की है। और अब देखिए कि अब क्या कर रहा है। आप सरकारी मामले में देखें, वे सीधे जाकर अरब से जुड़ने का यत्न कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर के वचन ने कहा जो भी इसराइल को कोसे उस पर श्राप होगा। निश्चय ही मैं इसराइल के पक्ष में हूँ। हमारी भूमि ले लो, वे इसे निश्चय ही ले लेंगे। वे लोग गलत कार्य कर रहे हैं, निश्चय ही वे कर रहे हैं। भाई हर राष्ट्र को देखें जो यहूदी के विरोध में हुआ, वे डूब गए। देखिए देखिए जर्मन जब वे यहूदियों के विरोध में हुए, उन्होंने उनको भट्टियों में जलाया। और देखिए ये आज क्या है। इटली को देखिए, ये यहूदियों के विरोध में हुए जब मुसोलिनी ने उन्हें इटली से बाहर निकाला। आज उसे देखें, यदि हमने उन्हें ना खिलाया होता तो वे भूखे मर जाते। और यहाँ सुसमाचार आकर सारे राष्ट्रों को वर्षों से अनुग्रह दे रहा है और हमने इसे अस्वीकार कर दिया। और अब शैतान अपना स्थान ले रहा है और कार्य कर रहा है। वो इन राजनीतिज्ञों के हृदय इसराइल के विरोध में फेर रहा है और ये लोग अरब के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। भाई हम वैसे ही हैं जैसे नष्ट हो गए हों। ये ठीक बात है, हम डूब जाएंगे निश्चय ही वैसे जैसे संसार। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मैं इसे प्रेम करता हूँ, ये किसके पक्ष में है? परंतु भाई मैं अपने प्रभु को हर चीज से बढ़कर प्रेम करता हूँ और मैं अपने देश को घुटने पर देखना पसंद करता हूँ। परंतु मुझे भय है कि हम ये कभी नहीं करेंगे, हम अंत समय में हैं। ये क्या हुआ? एक मिलीजुली भीड़ भीतर आ गई। हमारी कलीसियाओं को देखें, कुछ वर्षों पहले जब यहाँ पुराने ढंग के पवित्र कलीसियाएं थी, जब वे परमेश्वर के लिए खड़े हुए और धार्मिकता, जब महिलाएं सभ्य महिलाओं के जैसे वस्त्र पहने और व्यवहार किया, जब पुरुषों ने सभ्य वस्त्र और पुरुषों जैसा व्यवहार किया, जब लोग रविवार प्रातः कलीसिया में गए, जब उन्होंने पूरी रात्रियों वाली प्रार्थना सभाएं की, जब वे पुराने ढंग के लोग थे, उनमें वास्तविक बेदारी थी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर ने उनके सामने से हर शत्रु को हटा दिया। वे यात्रा में आगे बढ़ते रहे, परंतु जब अक्कन की पच्चर शिविर में आ गई तो नष्ट होने को छोड़ और कुछ नहीं बचा। हम अपने वचन पर हैं, परमेश्वर हमारे मार्ग पर परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है। परीक्षा का समय आता है। लूथरन कलीसिया के लिए परीक्षा का समय आया, मेथोडिस्ट के लिए परीक्षा का समय आया, पेंटिकॉस्टल के लिए परीक्षा का समय आया। यह हर कलीसिया के लिए आता है, ये हर व्यक्ति के लिए आता है परीक्षा का समय। केवल एक ही मार्ग है जिससे आप जान सकते हैं कि आप सही हैं, परमेश्वर के अनंत अंतिम रूपरेखा के साथ बने रहें, वचन के साथ स्थिर रहें। जो परमेश्वर कहता है कहें, ये ठीक बात है, कुछ भी कम या अधिक ना लें। क्यों हमें इसके लिए उसके लिए कोई और कुछ लेना होता है, जबकि परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा है? जी हाँ श्रीमान, हमें बदले में कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, ये सत्य है। परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है, कोई मतलब नहीं ये कितना भी तर्कहीन क्यों ना लगे। जो भी हो, परमेश्वर अपना वचन स्थिर रखता है, निश्चय ही उसने किया है। आपके दादा लोग कभी क्या कहेंगे यदि उनके दादा ने उन्हें ये बताया होता कि एक ऐसा समय आएगा कि जब गाड़ी बिना घोड़ों के चलेगी? तो संभव है वो उस पर हंसता, परंतु वो अब यहाँ पर है, ये ठीक बात है। तो इन बातों के विषय में क्या है जो घटित होंगी जब ये महान भविष्यवाणियाँ की गईं? परंतु हम यहाँ पर हैं और किसी दिन यीशु आएगा, परमेश्वर का महिमामय राजाधिराजा, परमेश्वर का पुत्र। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे करेगा, उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो पाप का न्याय करेगा। भाई या तो आप परमेश्वर का पाप के लिए दिया गया बलिदान स्वीकार करेंगे या आप न्याय में अकेले खड़े होंगे। राष्ट्र कलीसिया या व्यक्तिगत परीक्षा का समय। ध्यान दें, उन्होंने किसी को भेजा उनमें से 12 कि मालूम करें कि वे क्या कहेंगे। 10 ने वापस आकर कहा, ओह हम इसे नहीं कर सकते, ये असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते। परंतु वे छोटे कालिब और यहोशू ठूंठ पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम इसे करने के योग्य हैं। क्यों? ये निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। यदि आप बाहर की ओर देख रहे हैं, क्या ये इस ओर देखता है? क्या ये लोग क्या कहते हैं? आप वो ना देखें या कोई क्या कहता है। यदि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वचन के साथ स्थिर रहें। परमेश्वर ने उनसे उस देश की प्रतिज्ञा की, इसी पर कालेब और वे अपनी आशा रखे हुए थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ें, देखिए कैसे मूसा ने उनका सुधार किया, कहा मैंने ये किया वो किया और परमेश्वर ने ये किया और ये कहा, परंतु आप नहीं चाहेंगे। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के साथ स्थिर रहता है। ओह कभी कभी ये कठिन प्रतीत होता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने, ये कठिन है, ये युद्ध है। मिस्र में वहाँ परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वो देश दे दिया है और वो सब जो उसमें है। अब उसने ये ऐसे ही नहीं कहा मैं तुम्हें लेकर वहाँ ले जाऊँगा और तुम्हें वहाँ बसाऊंगा। उन्हें जो भी भूमि उनके पास थी उसके हर इंच के लिए उन्हें लड़ना था। परमेश्वर जब उसने वहाँ यहोशू को आज्ञा दी, उसने कहा साहस रख, डर मत, व्याकुल ना हो, क्योंकि तेरा प्रभु परमेश्वर जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे संग है। तेरा प्रभु परमेश्वर जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे साथ है। कोई मतलब नहीं कि क्या है, कितना कठिन है, रुकावट कितनी ही बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि ये मृत्यु की छाया की घाटी हो, तेरा प्रभु परमेश्वर जहाँ भी तू जाए तेरे साथ है। ओ यहोशू कैसे एक साथ इज़राइल को एकत्र करता है, कहा यहाँ खड़ा हो और परमेश्वर की महिमा को देख। परमेश्वर अपने वचन के साथ है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा जहाँ कहीं भी तेरे पांव का तलवा पड़ेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। यदि ये उद्धार के लिए है, यदि ये दिव्य चंगाई के लिए है, यदि ये अधिक आशीषों के लिए है, यदि ये किसी भी चीज के लिए है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, अपने पांव के निशान बनाओ। आमीन। हर जगह जहाँ तेरा पांव का तलवा पड़ेगा वो मैं तेरे अधिकार में दे दूंगा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन अनंत सत्य है। मैं इसका विश्वास करता हूँ। आप इसका विश्वास करते हैं भाई? ये हमारा समय है कि पद चिन्ह बनाएं। हम इस शिविर में यहाँ नहीं रुक सकते, आगे बढ़ रही है। हम आगे बढ़े महिमा से महिमा, बाइबल के एक अनुभव से दूसरे अनुभव को। आइए हम खोलें और अपने हृदयों को खोलें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, चित्र ठिकाने रखें, बाइबल में स्थिर रहें, उससे बाहर ना निकलें, वहीं टिके रहें, अनुकरण करें। हमारे पास परमेश्वर का भविष्य रखता है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर का दूत है, वो इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उन दिनों में की। ये बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का दूत कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। हम अग्नि स्तंभ में चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में, यीशु मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हैं। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और परमेश्वर के वचन का महान प्रकाशन पवित्र आत्मा हृदय में बैठ रहा है, उद्धार के वृक्ष को सामने ला रहा है। धार्मिक जीवन, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, सृज, सज्जनता, धीरज, निश्चय ही। ये केवल ब्रणम अनादनालय में नहीं होगा या दूसरे अनादनालयों में, ये व्यक्तियों को होगा। यदि संपूर्ण ब्रणम अनादनालय एक साथ एक मत में हो जाए तो सारा कुछ परमेश्वर के लिए एक बड़ी इकाई में बदल जाएगा। परंतु यदि केवल एक ही ब्रणम अनादनालय में जाकर इस प्रकार से चलता है तो परमेश्वर उस एक के साथ चलेगा, और इसे करने के लिए केवल एक ही मार्ग है कि इसके साथ पंक्तिबद्ध हो। प्रभु का नाम धन्य हो। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। क्यों उन लोगों ने कहा हम ये नहीं कर सकते, हम वहाँ पर बेदारी नहीं कर सकते, हर चीज हमारे विरुद्ध है। ओ प्रभु, वहाँ अमोरी हैं और हित्ती हैं और सब वे सब के लिए बंदे में हैं, और हम टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं। परंतु वो अधेड़ यहोशू लगभग 40 वर्ष का अपनी छाती पीट रहा है और कालिब कह रहा है, वहाँ कालिब खड़ा है और कह रहा है, कालिब ने कहा कि आप जानते हैं हम इसे कर सकने से अधिक सक्षम हैं। ओ भाई, छोटा सा सुंदर तीखी नाक वाला यहूदी वहाँ खड़ा है, ऊपर नीचे कूद रहा है, कह रहा है हम योग्य से भी अधिक हैं। हम केवल योग्य ही नहीं परंतु हम योग्य से भी बढ़कर हैं। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये तय हो गया। भाई, हम चंगाई ले सकते हैं, हम आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, हम बेदारी कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हम सच्चा पेंटिकॉस्ट ले सकते हैं, हम वास्तविक बेदारी पा सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। जैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अपनी आशीष के साथ पूरी करता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा न्याय के साथ पूरी करता है। हमें या तो न्याय या आशीष लेनी है, या तो आगे या पीछे बढ़ना है। हमें उसके साथ जाना है या अकेले। इसके साथ कोई नहीं जा सकता। उसके वचन पर स्थिर रहें। मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र के विषय में सोच सकता हूँ जो महिमा में चला गया। ओ धन्य है वो बूढ़ा भाई, एक संत मनुष्य, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पॉल रेडर उसका नाम है। एक बार वहाँ पश्चिमी किनारे पर उसके मरने से थोड़ा पहले, आप उसकी गवाही जानते हैं, उसका गाना जो उसने लिखा है, ओनली बिलीव, केवल विश्वास, जो मुझे प्रचार मंच पर बुलाता है। मुझे आश्चर्य है यदि पौलुस महिमा में उस पुराने गाने को हजारों हजार विभिन्न भाषा के लोगों को गाते सुनता, वो कैसे जान पाया कि वो बेचारा बूढ़ा वहाँ उसके सामने बैठा है, उन फटे जूतों को पहने और गले में टाई भी नहीं, बाल कटने हैं, कि उस परमेश्वर ने उसे इस गाने को समस्त संसार में मुझे ले जाने दिया। परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है। मुझ परमेश्वर ने इसे लगाया है, मैं इसे रात दिन सींचूंगा। उसने कहा इसे मेरे हाथ से कौन लेगा। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे डूब रहा है, परंतु ये कभी नहीं डूबेगा। ओ उस रात्रि वो छोटा पानी का जहाज, जब सारी आशाएं जा चुकी थी, वो लहरों में डगमगा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि अंतिम घड़ी आ गई है, परंतु अचानक से कोई पानी पर चलता हुआ आया, जैसे बहुत ही शांत। वो सदा वहीं पर था, वो कभी देर नहीं करता। एक और थपेड़ा लगता तो जहाज डूब जाता, परंतु वो सदा वहाँ रहता है, निश्चय ही। उस दिन वहाँ बाबुल में जब इब्री बालक भट्टी में चले गए तो ऐसा लगा कि अब अंत आ गया, परंतु जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा तो वहाँ एक परमेश्वर के पुत्र के समान उनके पास खड़ा था। वो सदा ही वही था, उसने कभी देर नहीं की। वो अपना वचन पूरा करता है, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हाँ, यदि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में होकर चलूं, तो भी मैं न डरूंगा। दाऊद ने कहा वो सदा वहाँ पर है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, वो अनंत है, सत्य, वो असफल नहीं हो सकता, उसका वचन कभी असफल नहीं हो सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टल सकेगा। एक बार पौलुस ने कहा वो एक संघर्ष कर रहा था, वो वहाँ एक टापू में था, उसे बुखार था, वो डॉक्टर से लगभग 100 मील दूर था। वहाँ दूर दलदल के स्थान में, दलदली जगह में, काले पानी के बुखार ने उसे जकड़ लिया और ये तुरंत मृत्यु है। और अंधकार हो गया था, और उसने अपनी वफादार पत्नी को बताया, कहा प्रिय तू मेरे दाहिनी ओर खड़ी होकर और प्रार्थना कर। कमरे में इतना अंधेरा हो गया था, परंतु कहा मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं चिंता नहीं करता कि क्या होता है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। कहा मैं इसी के साथ बना रहूंगा। कहा तू प्रिय यहाँ रह और प्रार्थना कर। और उसने प्रार्थना की और अंधेरा हो गया। बोला प्रिय कमरे में अंधेरा हो रहा है, परंतु ओह मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद इतना अंधेरा हो गया, वो बाहर चला गया, वो एक स्वप्न में चला गया। उसने सोचा कि वो स्वप्न देख रहा है। वो वहाँ वापस ओरेगन में था जहाँ से वो आया था, कुछ लकड़ियाँ काट रहा है। और मालिक ने कहा पॉल वहाँ पहाड़ की चोटी पर जाओ और मेरे लिए एक पेड़ काट कर लाओ, इतने इंच और इतने फुट लंबा, और मेरे पास ले आओ। कहा अच्छा साहब, मैं इसे करूँगा। वहाँ गया, उस छोटे पेड़ को काटा और उसमें कुल्हाड़ी गाड़ दी और उसे पकड़कर नीचे ले आया, और वो उसे उठा न सका। उसने कहा मेरा बल घट गया है और मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझ में बल नहीं रहा। क्यों? उसने कहा मैं यहाँ एक बड़ा आदमी हूँ, मेरा भार 200 पाउंड से अधिक है, मेरे पास अच्छी मांसपेशियां हैं। क्यों? उसने कहा मैं अपनी जांघ के बीच में किसी भी आकार का लट्ठा उठा लेता हूँ और ऊपर उठाकर और नीचे चेन डाल देता हूँ। उसने कहा और यहाँ मैं छोटा हाथ इससे बड़ा नहीं, और मैं इसे उठा नहीं सका। बोला मैंने जोर लगाया और कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा सारा बल चला गया। ओ उसने कहा तब मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। कहा मैं बैठ गया और पेड़ पर झुक गया। उसने कहा ओ मैं इतना दुखी हूँ, मेरा स्वामी इस पेड़ को वहाँ नीचे चाहता है और मैं इसे नीचे नहीं ले जा सकता। ओ हमारा स्वामी क्या चाहता है? वो एक बेदाग कलीसिया चाहता है बिना झुर्री की, वो लहू से धुले हुए लोगों के झुंड को चाहता है, वो लोगों को विश्वास के साथ चाहता है जो उसके वचन पर स्थिर रहें और कहें ये परमेश्वर का अनंत सत्य है, इसका मेरे लिए कोई अर्थ है और मैं इसका विश्वास करता हूँ। और कहा जैसे कि वो वहाँ बैठा था, वो पेड़ की ओर झुका और वो रो रहा था। और कहा उसने अपने साहब को बोलते हुए सुना और कहा पॉल, और उसने कहा हाँ साहब मैं यहाँ पर हूँ, परंतु मेरा सारा बल समाप्त हो गया, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने करने की कोशिश की और मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का यत्न किया जो आपने करने के लिए कहा, परंतु मैं इसे जमीन पर से नहीं उठा सका। उसने कहा मैंने संघर्ष किया, मैंने यत्न किया, मैंने सब कुछ किया, और मुझे आश्चर्य है यदि आज ये बहुत से भले सच्चे हृदय के प्रचारकों की मनोस्थिति नहीं है जो कलीसिया को बिना दाग और झुर्री के बनाना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रकट होते हुए देखें। हमने जोर लगाया और यत्न किया और चिल्लाए और रोए और जब तक गला खरखरा नहीं गया प्रचार किया और अपने तकिए पर लेट कर रोए, ओ परमेश्वर ये क्यों है? जब हम ठीक हो गए तो फिर शैतान आता है, तोड़ फोड़ करता है और जो हमारे पास है गिरा देता है। हम क्या कर सकते हैं जब हमारे प्रिय लोग और कैसे वे बिखर गए और इस प्रकार से निकल गए। फिर कहा जब उसने उसकी आवाज सुनी अपने साहब की, उसने सोचा ये तो विचित्र लगता है, मैंने कभी अपनी आवाज को नहीं सुना कि स्वामी मुझसे इतनी नम्रता से बोलता है। और कहा जब मैं घूमा तो वो मेरा वास्तविक स्वामी था, वो मेरा स्वामी, मेरा बचाने वाला। उसने कहा पौलुस तू मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कहा पौलुस क्या तू ये नहीं देखता कि वहाँ जल की एक छोटी सी धारा बह रही है? उसने कहा हाँ। उसने कहा बस वहाँ उसे उस स्थान में ले जा, उस पर चढ़ जा और उस पर सवार हो जा और उस शिविर में पहुँच जा, ये उस शिविर की ओर जाता है। उसने कहा मैं कूदा और लट्ठे को लुढ़काया और लट्ठे पर कूदा और खांचे में नीचे को ले चला गया, अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कि मैं इस पर सवार हूँ, मैं इस पर सवार हूँ, मैं इस पर सवार हूँ। और जब वो अपने आपे में आया तो वो फर्श के बीच में था और उसकी पत्नी पूरे जोर से चिल्ला रही थी, वो फर्श के बीच में था, कह रहा था मैं इस पर सवार हूँ, मैं इस पर सवार हूँ। और भाई बहन मैं जानता हूँ कि परीक्षाएं कठिन है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने प्रचार किया है और करने के लिए मैं जो जानता हूँ मैंने सब किया है। मैंने एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया हूँ जहाँ मैं देखता हूँ कि मैं और अधिक नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया है और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर सवार हूँ। मुझ परमेश्वर ने इसे लगाया है और इसे दिन और रात सींचता है कि कोई उसे मेरे हाथ से ना ले। परमेश्वर की कलीसिया सदा जारी रहेगी, परमेश्वर का वचन सदा जोरदार ढंग से खड़ा रहेगा, और चाहे जो हो, यदि राज्य आते हैं या एटम बम गिरता है या अमेरिका पिछड़ जाता है, जो भी हो, ये उसका वचन है, वो इसे बनाए रखता है और मैं इस पर सवार हूँ, मैं इसका संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ। हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु, ओ क्या ही सवारी है उस आनंद की ढलान की, दरार में हेलुलुया के प्रभाव में, ओ बस इस पर सवार आपने प्रतिज्ञा दी है। आपकी सारी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं और हम ये जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक गवाही रखता है कि वे सत्य है, और युगों में होते हुए हमने देखा कि धन्य प्राचीन बाइबल हम पर प्रकट हुई है। और अब महान घड़ी आ रही है, मध्य रात्रि की घड़ी। प्रभु महान तू समाचार के पवित्र सेवक सारे राष्ट्र में चले गए, प्रचार कर रहे हैं, रो रहे हैं, सोते का पानी पी रहे हैं, सताए गए, इधर से उधर दौड़े, नगरों से बाहर भागे, बंद किए गए, उपहास के पात्र बने, तिरस्कार किया गया, हंसी उड़ाई गई, भूखे रहे, परंतु कलीसिया आगे बढ़ती रही क्योंकि आपके वचन ने कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर कभी भी जयवंत न होंगे। और आज हम इस पर सवारी कर रहे हैं, वो चट्टान परमेश्वर का अनंत प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया हुआ सत्य, उस ठोस चट्टान पर, उस पर ये कलीसिया आज खड़ी है। अनेश्वरवादी और साम्यवादी तत्व इस पृथ्वी पर उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने पैर पटके और शोर मचाया, परंतु वो तो उस ठोस चट्टान पर बनी है। शैतान ने एक गलती ढूंढने वाला भेजा, ये हंसी उड़ाता है, ये सताए गए, ये संसार में सब कुछ कहलाए, और हम लगभग गिरा दिए गए थे और परखे गए और जांचे गए और ओ सब कुछ, परंतु ओ परमेश्वर वे पुराने यहोशू और कालेब वे अब भी कहते हैं हम अनंत तक परमेश्वर के वचन पर खड़े हुए हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, उसने कहा वो इसे करेगा और हम इसका विश्वास करते हैं। और आज प्रातः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति इसे समीप से देखे, कि इसका क्या अर्थ है कि अब हम इस पर सवारी कर रहे हैं। किसी दिन हम वहाँ शिविर में होंगे जहाँ संत लोग फैली हुई पृथ्वी पर शिविर लगाए हुए हैं। परमेश्वर और उसके बालक सदा आनंद करते रहेंगे। प्रभु इसे प्रदान करें। और जबकि इस प्रातः इस आराधनालय में हम अपने सिरों को झुकाए आंखें बंद किए हुए हैं, मुझे अचरज है यदि मसीह के नाम में यदि किसी ने ये कहने का साहस किया कि भाई ब्रैनम इसी समय इस दिन से मैं अब अपना हाथ मसीह की ओर उठाता हूँ और कह रहा हूँ आज के बाद से प्रभु मैं तेरे वचन पर निर्भर करूँगा। मैं वहाँ खड़ा होऊंगा और मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार करूँगा। कभी भी कुछ ऐसा करने का यत्न ना करें कि आप अपने को उद्धार की योग्यता पर लाएं। मैं बस प्रभु यीशु पर विश्वास करूँगा और उसे स्वीकार करूँगा और उसे अपने हृदय में दिव्य गहरा प्रेम रखने दूंगा और वो शांति जो सारी समझ रखती है मुझे पवित्र आत्मा देगा। इसके लिए प्रतीक्षा करूँगा। मैं एक बार उठा और सोचा मैं इसे करने जा सकता हूँ, परंतु मुझे मालूम पड़ा मैं इसे नहीं कर सकता। निश्चय ही आप कभी नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि आप अधिक समय तक वहाँ टिके रहें, जब तक वो इसे ना करे तो ये वहाँ टिकेगा और फिर ये स्थिर हो गया। परंतु यदि बस आप इसे करने का यत्न करें तो आप असफल होने जा रहे हैं और आपको असफल होना है। यही कारण है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव है और अंदर और बाहर है और सब जो आप कर रहे हैं ये इसलिए कि आपने करने का यत्न किया है। आप कहते हैं ओ मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं ठीक हूँ। ये ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है। नहीं, ये पवित्र आत्मा है जो भीतर आता है, वो स्थान को लेता है, तब वो सारी पुरानी कड़वी जड़ें निकाल देता है। पुराना गुस्सा और स्वभाव और जलन और संसार का प्रेम और चीजें आप में से सब बाहर निकाल देता है और तब आप नई सृष्टि हो जाते हैं। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे मसीह मुझे आज इस प्रातः इसी प्रकार का मसीह बना। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन आज प्रातः मुझे इसी प्रकार का मसीही बनाए। मैं यीशु के समान होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कड़वाहट की प्रत्येक जड़ मेरे हृदय से निकल जाए। अब यहाँ बहुत सो ने अपने हाथ उठाए हैं। अब आप जहाँ भी हैं, यदि आप अपने पूरे हृदय से चाहते हैं, न कि कल्पना परंतु विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ठीक आपके पास खड़ा है और उस पुरानी कड़वाहट को आप में से निकाल दे, वो आपको वही बना देगा जो आप बनना चाहते थे। जहां आप यदि आप उसे करने दें तो वो इस ऑपरेशन को आपके चिकित्सालय में करेगा। क्योंकि सब बातें संभव हैं, केवल विश्वास करें, केवल विश्वास, केवल विश्वास। सारी चीजें संभव हैं, केवल विश्वास, केवल विश्वास। प्रार्थना करते रहें, प्रभु बालक को स्मरण रखें, ये आपका प्राण है। हो सकता है आप दूसरी प्रार्थना सभा में बिल्कुल ना हो, ये अंतिम हो। परमेश्वर इसे अभी करें। कहते हैं भाई ब्रैनम क्या मुझे वेदी पर आना चाहिए? यदि आप चाहते हैं तो निश्चय ही, यदि आप नहीं चाहते तो वहीं रहें जहां हैं। आप केवल इसका विश्वास करें। वो जो मेरे वचनों को सुनता और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और कभी भी न्याय में नहीं आता परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यही बात है। यदि आप वेदी पर आना चाहते हैं तो ये खुला है। यदि आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये आपका प्राण है, ये वो आप हैं। भाई समय समीप है, कलीसिया अब तैयार होने पर है। पुरानी धारा कीचड़ भरी है, हमने जाल फेंका और मछलियाँ पकड़ी और पुरानी बंसियाँ उसमें तब तक डाली जब तक सब कुछ गदला नहीं हो गया। बहुत सी सुअरनियाँ कीचड़ में हैं, वो कीचड़ में हैं। जैसे कि मैं एक सेवक हूँ, मैं बस ये अनुभव करता हूँ यदि परमेश्वर ये करने जा रहा है तो ये परमेश्वर को लेने जा रहा है, मैं नहीं कर सकता। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है। ये वचन है, ये सत्य है, इसे आप अपने सामने यहाँ खुलते हुए देखते हैं। अंत समीप है, यीशु किसी भी समय आ सकता है। हो सकता है, ये हो सकता है कि संयुक्त राज्य का कोई समय ना हो। आज रात्रि सूर्य नीचे जाता है, वे एक बार में 5,000 परमाणु बम भेज सकते हैं एक भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित ना बचे। अब से अगली घड़ी में यदि आप चाहते हैं तो ये आप पर है। इस पर सोचिए जबकि हम प्रार्थना करते हैं। धन्य स्वर्गीय पिता, इस वचन को बंद करते हुए जैसे कि मैं पन्नों को वापस उलट रहा हूँ, अब संदेश मोहर बंद हो गया है। प्रभु का आगमन समीप आ रहा है। बहुतों ने इस भवन में इस प्रातः अपने हाथ उठाए हैं और कहा, इसके द्वारा मैं मसीह होना चाहता हूँ। मैं वास्तव में वास्तविक परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ दास होना चाहता हूँ। प्रभु, संभव है बहुत वर्षों से आपने उनके हृदय से व्यवहार किया है, आपने उन्हें ये बताया है कि आपका अनुग्रह अब उनके पास पहुंच चुका है। वे कुल मिलाकर चले नहीं गए तो भी कुछ ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि उनमें और इच्छा नहीं है। एक वर्ष पहले वे अपना हाथ उठाकर कहते थे, हाँ मैं मसीही होना चाहूँगा, अब ये बहुत हो चुका, अब वे इससे और अनुभव नहीं करते, बस लगभग पूरा हो गया। और ये ऐसा प्रतीत होता है कि रास्ते में आम बात है बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारकों को सुनना, जैसे कि वे रास्तों से होकर निकल गए, उन्होंने लोगों का अनुभव लेने वाले भेजे, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने झुंडों को संगठित किया, वे घरों पर जाते हैं उनके पास जो अपने हाथ उठाएंगे और यत्न करेंगे, जहाँ हजारों हजार ने आरम्भ किया दो या तीन पकड़े रहेंगे। भाई ये हो गया प्रभु, हो गया परमेश्वर, हम चले गए। ओ पिता, मैं जानता हूँ कि आपने कहा है कि सब जो मसीह के पास आएगा आप उसे बनाए रखेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ अपने संपूर्ण हृदय से, और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन्हें बनाए रखेंगे जिनके हृदय और विचार आपके ऊपर टिके हुए हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु उस कलीसिया के लिए और जीवित परमेश्वर के संतों के लिए जो उस कलीसिया में हैं, ये महान आत्मिक देह। परंतु ओ परमेश्वर, मेरा हृदय जो बाहर है उनके लिए कितना थरथराता है, ये जानते हुए कि वे दीवार पर हस्तलेख देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें घटित होते हुए देख रहे हैं, चिन्ह स्तंभों को, और अमेरिका अब भी पुराने गंदे उपहासों से भरा हुआ है, और टेलीविजन और रेडियो पर बिना सेंसर के कार्यक्रम और प्रेम कहानी और हास्य और व्यंग और आमोद प्रमोद का महान समय और हॉलीवुड का प्रचार। और ओ परमेश्वर, सत्य में ये मध्य रात्रि की घड़ी है, वो जाने के लिए तैयार हैं, और प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे चिंता हुई, मैं चिल्लाया, मैंने विनती की, ये आपके ऊपर है प्रभु, मैं बस यही कर सकता था, मैंने इसको प्रचार किया, प्रभु मैं बस वचन पर खड़ा रहूँगा, मैं सीधा शिविर में जाने का यत्न कर रहा हूँ, समय अधिक लंबा ना होगा। अब परमेश्वर, वे जो हृदय में ईमानदार हैं आज, परमेश्वर उनके लिए अभी कुछ कर, उन्हें आज के बाद से अपना बालक होने दे। प्रभु हमारे मध्य में बीमारों को चंगा करें, उन्हें अच्छा कर दें, उन ठंडे पिछड़ुओं को वापस ले आएं प्रभु, उन्हें मालूम होने पाए कि वे जोखिम भरे स्थान में खेल रहे हैं, वे बहुत ही जल्दी चले जाएंगे, उस समय बहुत देर हो जाएगी। अब इसे ग्रहण करें कि आपका आत्मा हमारे साथ व्यवहार करेगा, मसीह के नाम में आमीन। नवयुवक लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं ये कर सकता, इस प्रातः बीते कल जन्म दिवस के बाद इस जीवन के लगभग 48 वर्ष, कुछ वर्ष इसके लगभग 24 वर्ष प्रभु के लिए लगा चुका हूँ। 23 वर्ष के एक लड़के के समान मैंने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। यदि कोई खेद जो मुझे कोई खेद यदि मैं इस प्रातः एक बटन को छू और वापस उस शानदार आयु में लगभग 16वें 17वें में चला जाऊं, मैं एक ही चीज के लिए करना चाहूंगा कि मसीह की सेवा करूं। इसका यही अर्थ है कि केवल मसीह की सेवा करूं। परमेश्वर जो मेरे हृदय को जानता है कि ये सत्य है, केवल मसीह की सेवा। मैंने कभी भी कोई चीज नहीं देखी या कुछ सोचा जिसकी तुलना मेरे इस आशीषित हृदय में बसे हुए मसीह से हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने समुद्री यात्राएं की हैं, मैं हवाई जहाज से उड़ा, मैंने संसार के दृश्य देखे हैं, मैंने संसार के 7 भेदों को देखा है, मैंने 7 विशेष स्थान देखे हैं संसार के, मैंने संसार के सारे पहाड़ी स्थान समीप से देखे हैं, मैं एक शिकारी हूँ, मैंने सब प्रकार के देशों में शिकार किया है, मैंने सब कुछ किया है, मछली पकड़ी है, घुड़सवारी की है, चरागाहों में मैंने सब कुछ किया है जो करने के लिए मुझे मालूम था। और मैं ये कहूँगा कि इस सब को एक साथ रख दो, तब भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एक बिंदु नहीं बनता। मैं क्या कर सकता था क्या? ओ हाँ, ये यहाँ छोटे बालक हैं। मेरी एक छोटी लड़की मित्र थी और मेरे बालों से तेल लगा हुआ था और कार के सामने का शीशा कार के पीछे रखकर और नियुक्त समय पर मिलने गया, मैंने सोचा। परंतु मुझे इससे शांति नहीं मिली। कुछ ऐसा था जिसकी आप हर समय कमी अनुभव करते रहते हैं। मैंने सुंदर भूरी आंखों वाली लड़की देखी और ये आप जानते हैं कि कैसा अनुभव होता है एक नवयुवक के समान। मैंने सोचा कि यही था, यदि मुझे इसी नवयुवती से मिलने का समय मिल जाए तो इससे मेरी उत्सुकता पूरी हो जाएगी, इससे बस तय हो जाएगा। यदि इससे मिलने का समय मिल जाए और उसके साथ 15 मिनट के लिए बाहर जाऊं और किसी की प्रतीक्षा करूं, ये मुझे संतुष्ट नहीं करता। ओ, इसमें कुछ नहीं है। परंतु वो धन्य घड़ी, उसका नाम धन्य हो, वहाँ नीचे पुराने कोयले की छत के नीचे इमारत के पिछवाड़े घास के बोरे पर घुटने टिकाए, गलियारे में जहाँ मैंने घुटने टिकाए हुए थे वहाँ जमीन गीली थी और कहा, प्रभु यीशु, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? वो जब वो शांति जिसने सारी समझ को पीछे छोड़ दिया, 24 वर्षों पहले ये मेरे हृदय में बैठ गई। ये समस्त संसार से अधिक मूल्यवान, मैंने इसकी तुलना में कभी भी कुछ नहीं देखा। बहुत से जोखिमों में, संकट और फंदों में मैं पहले ही निकल चुका। ये अनुग्रह ही है जो मुझे इतनी दूर तक सुरक्षित लाया। ये अनुग्रह ही है जो मुझे ले जाएगा। मैं उस पर बीमारी और दुर्घटना में विश्वास करता हूँ। मैंने उस पर जब हवाई जहाज तूफान में घूम रहा था, मैंने उस पर विश्वास किया है। और आपने नहीं जाना कि क्या? मैंने कहा, प्रभु यीशु, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? यदि नहीं तो इस जहाज को सीधा कर दें। और देखा कि वो अपनी सही स्थिति में आराम से था। मैं ऐसी चिकित्सालय में खड़ा हुआ हूँ जहाँ राष्ट्र के सबसे अच्छे डॉक्टर, और उन्होंने मेरी ओर देखा होगा और कहा, जीवित रहने के लिए थोड़ी और देर है, वो जा रहा है। और जब सबसे अच्छा डॉक्टर जो मेरे लिए लिए जा सकते थे, मैंने कहा, प्रभु यीशु, क्या आप मेरे साथ हैं? और अचानक से मैं अपने आप में आ गया, निश्चय ही। ओ अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर जो सुन पड़ता है। मेरी कितनी इच्छा है कि इसकी व्याख्या करने को मेरे पास जीभ होती कि ये क्या है। ये मनुष्य की बुद्धि के लिए बहुत महान है। मेरे शब्द लें, मित्र इसके बदले में कुछ ना लें, इसके स्थान में कुछ ना लें। केवल जाकर ये ना कहें, अरे मैं ये कहता हूँ, अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ही भला व्यक्ति हूँ। इस पर निर्भर ना करें, ये ना करें। तब तक वहाँ टिके रहें जब तक कुछ पहुँच ना जाए। सारे पाप को ना ले ले और वहाँ एक चुम्बन ले जो प्रज्वलित हो, और जब परीक्षा आए तो आपको दर्शन चकित ना होना पड़े। यदि मैं वो करने जा रहा हूँ, वहाँ कुछ है जो थामे हुए है। और एक अधेड़ आयु के व्यक्ति के समान मुझे नीचे आना पड़ा और ये सोचा कि इन्हीं किन्हीं दिनों में मुझे जाना है। यदि यीशु देर करता है तो मुझे जाना है। मैं नहीं जानता कि ये क्या होगा। जब मैं मार के अंत में पहुंचूंगा, मैं नहीं जानता। मैं अपने प्रचार का विश्वास नहीं कर रहा हूं। नहीं श्रीमान, नहीं, जो मैंने किया है मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। ओ परमेश्वर, ओ ये मुझसे दूर रहे। मैंने चीजें की हैं जब से मैं प्रचारक हुआ हूं, उपेक्षा की और ये किया और वो किया। मैं किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना चाहता। नहीं श्रीमान, मैं कहना नहीं चाहता, प्रभु मैंने तेरे लिए लाखों प्राण जीते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। केवल एक ही चीज पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, वो उसका अनुग्रह, उसकी प्रतिज्ञा, उसका वचन। प्रभु आपने कहा है, यदि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर चलूँ तो मुझे कोई भय ना होगा। आपने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब मैं उस तकिए को दबा रहा हूँ और ठंडी मृत्यु का पसीना मेरी भौहों पर से बहेगा, तो वो वहाँ पर होगा, बिल्कुल वैसे ही निश्चित रूप से जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो वहाँ होगा। जब मैंने अपना अंतिम उपदेश प्रचार किया तो पिछली बार बाइबल बंद करके चला गया, कार्य पूरा हो गया, वो वहाँ होगा। जी हाँ श्रीमान, और जितनी निश्चितता से मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो आ रहा है, जब वो फिर आता है तो मैं भी वहाँ होऊंगा। जी हाँ श्रीमान, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी योग्यता है, ये इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ये उसके अनंत वचन के आधार पर स्वीकार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके द्वारा कुछ घटित हुआ, कुछ हुआ, ना कि मैं कितना शोर कर सकता हूँ, कितनी भली प्रकार मैं ये कह सकता हूँ। यदि मैं संसार में महान प्रचारक होता, यदि मैं मृतक को जिला देता, जो भी, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं। ये इसलिए कि कुछ घटित हुआ, यहाँ पर कुछ घटित हुआ। इसने सारी पुरानी ईर्ष्या और कड़वाहट और बुराई और मेरे हृदय से सब कुछ निकाल दिया और अब मैं केवल उससे प्रेम करता हूँ दिन और रात। कुछ हुआ, मैं किसी दिन उससे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी। छोटी कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए संघर्ष कर रही है। इस दिन में कभी भी नहीं लड़खड़ाई। यदि आप करते हैं तो तुरंत प्रायश्चित करें, वापस कूदें, समझे। यदि आप अपना पंजा पटकते हैं तो गिरे नहीं, यदि आप गिरते हैं तो खड़े हो जाएं। उठें प्रभु, उठें निश्चय ही। यदि आपने गलती की है, अब ये बेदारी जो आ रही है, आप बस वापस गए और ठंडे हो गए, उदासीन, जागे, अपनी बाइबल में जाएं, देव के बाग में कहीं चले जाएं, अपने आप से बाहर आएं और कहें, परमेश्वर अब यहाँ मैं हूँ, मुझे इन बातों के लिए खेद है। आपको इसके लिए ताड़ना मिलने जा रही है, इसे याद रखें। जी हाँ, अवश्य है, आप वही काटेंगे जो आप बोएंगे। जी हाँ श्रीमान, परंतु आप जो भी करते हैं अपनी ताड़ना यहीं पाएं। सीधे खड़े हो और सीधे हो जाएं और कहें, पिता मैं यहाँ हूँ, जैसा भी आप उचित समझे मेरी ताड़ना करें प्रभु, मैं यहाँ हूँ। ठीक, यही ठीक बात है। तब आप अपने हृदय में हैलुलिया के साथ वापस जाएं। परमेश्वर कोड़े आप अपने ऊपर आने दें और कहें, हाँ प्रभु, मैं प्रत्येक बिंदु में इसी के योग्य हूँ। बस आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर आपको इसमें से निकालेगा। ठीक है, इन्हीं दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ वो पुराना अच्छा गीत भाई नेविल और वे गाया करते थे, कठिनाइयों और परीक्षाओं से मैं शीघ्र ही पार हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक बात है। कितने उससे प्रेम करते हैं, आपके हाथों को देखूं। ठीक है, हमें स्वर दें, अद्भुत अनुग्रह, अमेजिंग ग्रेस। तब एक मिनट के लिए शांत रहें, अब धीरे धीरे। अद्भुत अनुग्रह, कितना मीठा और निश्चित, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचाया। एक समय में खोया हुआ था परंतु अब मिल गया, अंधा था परंतु अब देखता हूँ। यह अनुग्रह था जिसने मेरे हृदय को डरना सिखाया, और अनुग्रह ने मुझे भय से छुड़ाया। वो अनुग्रह जो प्रकट हुआ कितना अमूल्य किया। उस घड़ी पहले मैंने जब विश्वास किया, अब हम एक साथ मिलकर, जब हम वहाँ 10,000 वर्षों के लिए होंगे, तेज चमकदार सूर्य के समान, तब हमारे पास गाने के लिए दिन कम ना होंगे। तब जब हम जहाँ से आरंभ हुए थे, मैं उन बूढ़े डॉक्टर डेविस को सुना करता था, उनमें से बहुत से, और मैंने बहुत से पुराने संतों को सुना जब वे आ रहे थे। उनके चले जाने के बाद और सेवकाई पक रही थी, मैंने उनके अनुभव के विषय में उनको बातें करते हुए सुना। अब उसको अनुभव करना आरंभ किया, आमीन, अभी अनुभव करना आरंभ किया है। ओ कैसा, क्या ही आश्चर्यजनक बात है। आज मैं क्या पकड़ूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, आप कहाँ जा रहे हैं, आमीन, मैं क्या करूंगा, कहाँ, आज मेरा क्या होता है यदि ये मसीह के लिए नहीं होता, मेरी आशाएं कहाँ लंगर डालती। मैं एक पागल होता जब मैं देखता हूँ कि क्या घटित होने जा रहा है, और इसके विषय में सब कुछ जानता हूँ सदा। ओ तो मैं क्या करता, परंतु ओ मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। ये दिन ढलने पर है, हम एक स्वप्न में हैं, हमारा जाग उठना निश्चित है। ओ इस रात्रि स्वप्न में जैसा कि ये था, इसमें से बाहर निकल कर आऊं, उस वसंत में, सदा की युवावस्था में, सदा के स्वस्थ में, सदा के आनंद में, सदा की शांति, क्या ये अद्भुत नहीं? वो इतना वास्तविक है। मुझे आश्चर्य है कि अब यहाँ कितने बीमार हैं और प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आपके हाथ देखें, ठीक है? आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह क्या हुआ। हमारे मध्य में बहुत शानदार बात प्रार्थना सभा में घटित हुई। इस प्रचार मंच पर और किसी चीज की प्रतिछाया में आ रहा हूँ जो अब है, इससे महान प्रतीत हो रहा था। मैं प्रचार मंच पर आया और परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ताई का वरदान दिया है, जो कि हो सकता है कि इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको इसे सिद्ध कर सकता हूँ, ठीक यहाँ, समझे? इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु मैं इसे देखता हूँ कि कार्य उस प्रकार से समाप्त नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक वरदान है। दूसरी बात, ये एक व्यक्तिगत है, आप समझते हैं, ये एक व्यक्ति से संबंधित है वरदान के द्वारा। परंतु उस दिन मैंने कुछ किया, ऑकलैंड में लोगों को जहां एक बड़े तमाश ग्रह में एकत्र करने का यत्न किया, मैंने कहा बस उसकी उपस्थिति और वचन के साथ स्थिर रहा और लोगों को साथ लिया। आप जानते हैं क्या, मेरे विश्वास से कहीं अधिक चंगाइयां इन सभाओं में मैंने कभी भी नहीं देखी, अफ्रीका जैसी सभाओं को छोड़कर और इस प्रकार से आसपास सिवाय उसके आकार के। लोग परमेश्वर की उपस्थिति को सभा में पहचान रहे थे, केवल वहां बैठे हुए और परमेश्वर की उपस्थिति को पा रहे थे, और लोग खड़े होते और चंगे हो गए, ढेंगी आंखें सीधी हो गईं, और ओ ये मैं विश्वास करता हूं कि वो समय आ रहा है जहां पौलुस ने कहा, जहां भविष्यवाणी वो असफल हो जाएगी, जहां भाषाएं होंगी वे बंद हो जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा समय आ रहा है जब तक कि संत लोग इस प्रकार से एकत्र होंगे और प्रेम का आत्मा भक्त मंडली पर छाया हुआ होगा, और वहां प्रत्येक व्यक्ति जो गलत होगा निकाला जाएगा। ये पवित्र आत्मा की ऐसी उपस्थिति होगी। मैं विश्वास करता हूं जबकि हम उन लोगों पर हाथ रखते हैं और अब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये एक संबंध हो सकता है, एक अभिषेक सेवक का और हाथ रखना जैसे कि परमेश्वर की आशीष। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि एक समय आ रहा है जब परमेश्वर की कलीसिया बुलाई जाने वाली है, इस प्रकार से जहां संत एक साथ एकत्र होकर बैठेंगे और पवित्र आत्मा भीतर आ जाएगा, बस प्रेम प्रकट करते हुए, जैसा कि ये पेंतेकोस्त के दिन हुआ था, समझे? और लोगों को चंगा करता है और लोगों को उठाता है और महान बातें, मैंने इसे घटित होते हुए देखना आरंभ किया है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। लोग वरदानों के साथ गए, ये सत्य है, ये कहने में कोई संदेह नहीं कि मैं किसी का आलोचक नहीं हूँ। जो वे विश्वास करते हैं ये उन पर निर्भर करता है, परंतु मैंने लोगों को वरदानों की सेवकाई के साथ देखा है, परंतु वे आगे गए और अधिक या कम, एक बनाया। मैं क्या कहूँगा, आदर और प्रेम के साथ, और परमेश्वर जानता है कि ये मेरे हृदय से है, देखा कि उन्होंने इसे पैसे जमा करने के लिए अधिक किया। आप देखिए, बस लोगों को एकत्र किया और कुछ बड़ा सा पहनना चाहते हैं, और संभव है वे पैसा निकालें, और भाई वो ठीक हो सकता है, परंतु मुझे प्रतीत होता है वे कहते हैं भाई अंत आ रहा है, उनके पैसे से लोगों की क्या आवश्यकता है, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है, आपको स्वयं को, समझे? इसलिए बात यह है कि सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा है। आप देखिए, प्रचार करना, मैं विश्वास करता हूं यदि हम केवल वरदान, आप देखिए चिन्ह, और अब एक व्यक्ति यहां आ सकता है इस प्रातः और इस प्रचार मंच पर खड़ा होता है और महान आश्चर्यकर्म और चिन्ह करता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वो व्यक्ति बचा हुआ है, शैतान चिन्ह और आश्चर्यकर्म करता है, निश्चय ही वे करते हैं, निश्चय ही वे करते हैं, निश्चय ही वे करते हैं, और बाइबल ने कहा वे इससे भी अधिक करेंगे अंत के दिनों में। यीशु ने कहा मेरे पास बहुत से आएंगे और कहेंगे कि प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से प्रेत आत्माओं को नहीं निकाला, और क्या मैंने ये नहीं किया, और क्या मैंने वो नहीं किया, और ये सारी बातें। उसने कहा मैंने ये कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कार्य करने वालों, समझे? मैं विश्वास करता हूँ समय आ रहा है, वरदानों का प्रकटीकरण हर मनुष्य को देता है कि इससे अतिरिक्त लाभ हो, ये सत्य है। मैं विश्वास करता हूँ वरदान बहुत ही शानदार हैं और हमें उनकी आवश्यकता है और उनका आदर करें, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि समय आ रहा है कि इसका स्तर इससे ऊंचा होने जा रहा है। क्यों? कुल मिलाकर ये चीजें हो गई हैं, ये वो जो कि प्रेम है सदा तक स्थिर रहेगा, समझे? ये परमेश्वर का प्रेम है। हम खड़े हुए इसी प्रकार से प्रचार करते रहेंगे या बातें करते रहेंगे, और केवल प्रेम निर्माण को तय कर देगा। ओ, आप देखते हैं ये प्रचार का दिन है। ये दिन है जबकि हमें भीतर जाकर और पापियों को बाहर खींच कर लाना है। देखिए मेरा क्या अर्थ है, वचन का प्रचार इसलिए है पापियों के लिए और उनको बाहर निकाल कर लाना। अब हमें ध्यान देना है उसमें और हम चिन्ह और आश्चर्यकर्म हाथों के रखने के द्वारा और आदि आदि, क्योंकि ये प्रचार है। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि अब समय आ रहा है कि जब वो लगभग कलीसिया लगभग लंगर डालने पर है, समझे। परमेश्वर की देह विचित्र नहीं है, उसके एक हाथ में 6 उंगलियां नहीं है, एक हाथ में केवल 5 ही उंगलियां होंगी। मसीह की देह विचित्र नहीं होगी और जब अंतिम व्यक्ति मसीह की देह में आ जाएगा तब पूरा हो जाएगा। ये हो गया, मैं नहीं जानता कौन सा, ये वाला अंतिम हो सकता है। इस प्रातः आप अंतिम हो सकते हैं, हो सकता है आज अफ्रीका में अंतिम वाला अंदर आ जाएगा। परंतु जब अंतिम वाला हो गया, मेरा अर्थ आप आगे बढ़ सकते हैं सुसमाचार प्रचार करते हुए, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। बिलीग्राम और उन लोगों से बातें करते हुए जब वे ऐसे स्थान में गए जहां 30,000 या 20,000 का मत परिवर्तन हुआ एक वर्ष में, उन्हें 20 या 30 लोग भी नहीं मिले। इस पर सोचें, समझे। अब ये मुझे कॉल्विनवादी बनाता है, बिल्कुल ठीक, समझे। परमेश्वर ने क्या बनाया था, परमेश्वर ने बनाया। अब यीशु पृथ्वी पर केवल ये कहने को कभी नहीं आया, मुझे कुछ प्रचारक लेने होंगे कि जाकर प्रचार करें और मैंने क्या किया है उन्हें बताएं और संभव है कोई मेरे लिए दुख का अनुभव करे और बच जाए। परमेश्वर अपने कार्य को इस प्रकार से नहीं चलाता। वहाँ परमेश्वर आरंभ से ही ठीक ठीक जानता था कि कौन बचेगा। यीशु उन्हें बचाने आया जिन्हें वो जानता था कि कौन बचेगा। वो कभी नहीं चाहता था कि वे नष्ट होंगे, परंतु परमेश्वर होने के कारण वो जानता था कि कौन नष्ट होगा और कौन बचेगा। इसलिए वो पहले से ठहरा सकता था, ठहराना नहीं, वो पूर्व ज्ञान के द्वारा वो क्रम में रख सकता था कि हर चीज उसकी महिमा के लिए कार्य करे। क्योंकि ये शैतान, वो शैतान सर्वव्यापी नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान, ना ही वो आरंभ से अंत को जानता है, केवल परमेश्वर ही जानता है। ये एक बात है, परमेश्वर केवल यहाँ पर है, वो जानता है, शैतान नहीं जानता कि क्या घटित होने जा रहा है। वो केवल ये जानता है कि वो शैतान है और वो वही करता है जो वो कर सकता है और वो जिस चीज में जा सकता है वो करता है। परंतु परमेश्वर अंत को जानता है, आमीन। इसलिए परमेश्वर अंत को जानते हुए वो हर चीज को अपनी महिमा के लिए ठीक कर सकता है, आमीन। ओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, ओ प्रभु, समझे, वो परमेश्वर है। इसलिए याद रखें, जब अंतिम व्यक्ति जो अपना आपका नाम जीवन की मेमने की पुस्तक में कब लिखा गया, कल, पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष, नहीं श्रीमान, जब संसार की सृष्टि की गई थी, आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया। बाइबल ने यही कहा है, बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में कहा, और मसीह विरोधी ने उन सब को जो पृथ्वी पर रहते थे धोखा दिया, जिनके नाम संसार की सृष्टि से पहले मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। आपका नाम तब लिखा गया, अब केवल, आप कहते हैं तो फिर सुसमाचार का प्रचार क्या है? भाई बाइबल इसकी स्पष्ट व्याख्या करती है, समझे। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य के समान है जो जाल लेकर समुद्र या झील पर गया और उसने समुद्र में जाल डाला और उसने खींचा। सुसमाचार का प्रचार ये है, समझे, वो सारा का सारा समुद्र है, संयुक्त राज्य एक झील है और सेवकगण, अब मैं वहाँ जाता हूँ जेफरसन विले में, झील के इस कोने पर खड़ा होता हूँ, कहता हूँ, भाई नेविल आप जाल डाल रहे थे, हाँ, कोई लाभ हुआ, अधिक नहीं, अच्छा चलो हम थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ जाल डालूंगा, और मैं अपना जाल फेंकूंगा और वो अपना फेंकते हैं और हम खींचते हैं, प्रचार करना, खींचना, लोगों का झुंड आता है, कहते हैं हाँ मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहता हूँ, ठीक है, चारों ओर देखें, मछली कौन सी है, कौन सी, मैं नहीं जानता, समझे, अच्छा अब आप क्या करने जा रहे हैं, मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ प्रभु के लिए, मुझे कैलिफोर्निया भेज रहा है कुछ देर के लिए, मैं वहाँ जाल डालूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा और इस प्रकार से अपना जाल फेंकूंगा और 1500 को एक बार में खींच लाऊंगा, क्या वे सब बच गए, मैं नहीं जानता, वे वहाँ हैं, मैं जाल उठाता हूँ, ये सुसमाचार का जाल है, उसमें कुछ, बाइबल ने कहा उन सब प्रकार की चीजों के साथ जो पानी में थी, उन सब ने उसी जल में सांस ली, उसी पानी में रहे, ये ठीक बात है, आमीन, समझे, वहाँ रामानंदी कछुआ, कीच वाला कछुआ, सांप, मेंढक, छिपकलियाँ, कूड़ा करकट और वास्तविक मछली थी। अब जो मछलियाँ थी, जब उन पर जाल फेंका गया, वो किनारे पर भी मछलियाँ ही थी, वे जो सुसमाचार के जाल में रामानंदी कछुए थे, वे किनारे पर भी वही रामानंदी कछुए थे। ये अधिक समय नहीं लगेगा कि वे फिर वापस कीचड़ में चले जाएंगे, जैसे सुअर ने कीचड़ में और कुत्ता अपनी उल्टी पर, वे चले जाते हैं, समझे? परंतु आरंभ से वे वही रामानंदी कछुए थे। ये मेरा काम नहीं है कि कहूँ वो रामानंदी कछुआ है, मैं नहीं जानता, मैं बस जाल डाल रहा हूँ, देखिए बस जाल खींच रहा हूँ। परंतु भाई, जब अंतिम मछली पानी से बाहर आ जाएगी, बस यही है। ओ प्रभु स्वयं ही आएगा और कहेगा कार्य हो गया है, थोड़ी देर के बाद स्थान बदल जाएगा। ये ठीक बात है, ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, वो कहेगा कार्य हो गया, ये पूरा हो गया, ये समाप्त हो गया, जब अंतिम वाला बाहर आ जाता है और वहाँ सुअरों का पुराना झुंड है और सब कुछ। परमेश्वर उन मछलियों को बाहर खींच रहा है, जितनी हो जल्दी हो सकता है कर रहा है। चारों ओर से प्रचारक अपने अपने जाल घुमा घुमा कर इधर उधर से डाल रहे हैं। हम एक दूसरे में भी अपने जाल उलझा रहे हैं, जितनी जोर से हो सकता है हम जाल फेंक रहे हैं। वो लगभग तैयार है, वो इस पुराने तालाब को एक दिन में साफ कर देगा और पूरा हो जाएगा। परंतु मछली अच्छे साफ जल में जो वहाँ है जाएगी, जहाँ उसके पास सदा का जीवन होगा। आमीन। ओ वो जब अंतिम वाला आता है, कैसे परमेश्वर को कहने के लिए क्या ही सौभाग्य होगा, क्या आप मछली होना चाहते हैं? आमीन। क्या तुम मेरी मेज पर मछली होना चाहते हो? क्या तुम आकर मेरी मेज पर खाना खाना चाहते हो? ओ प्रभु निश्चय ही, निश्चय। देखा, परंतु उनका स्वभाव मछली है। जब आप मसीही हैं, तो आपका स्वभाव मसीही है। आपको ये नहीं कहना होता अब आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप शराब नहीं पी सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है, ये नहीं कहना, जो भी है वो बस आप ये नहीं करते, समझे? उनका स्वभाव भिन्न है। मसीह का आत्मा व्यक्ति में है और मसीह वो चीजें नहीं करता, समझे? आप कहते हैं आपको प्रभु के साथ प्रेम करना होगा, आपको आराधना ले जाना ही चाहिए, आपको लोगों को ये नहीं बताना है। जो भी हो, वे जाएंगे, वे बारिश में जाएंगे, वे जाएंगे, वे मृत्यु में से होकर जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, निश्चय ही वे इसे प्रेम करते हैं, वे वहाँ पहुँचते हैं। बस यही है, ये उनका जीवन है। यदि वे ये नहीं करते तो उन्हें लगता है वे नष्ट हो रहे हैं, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान, आपको वहाँ पहुँचना ही है। आपके हृदय में कुछ जल रहा है, वहाँ विवाद करने के लिए नहीं, ना ही वहाँ झगड़ने के लिए, परंतु वहाँ आराधना करने के लिए। ओ प्रभु, और आप घर ताजा होकर जाते हैं। क्या यह अद्भुत जीवन नहीं है? कितनों का इसका अनुभव है? आपके हाथ देखूं? ओ ठीक है, ग्रेडी हम वो गाएं, शांति शांति। शांति, अद्भुत शांति ऊपर पिता के पास से आती है, मेरी आत्मा पर छा जाती है सदा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेम की उस अथाह तरंगों में। अब कुछ करना चाहते हैं, आपके पास जो बैठा है उससे हाथ मिलाएं, कहें परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहन, आपसे स्वर्ग में मिलना चाहता हूँ। शांति शांति, अद्भुत शांति ऊपर पिता के पास से आती है, मेरी आत्मा में सदा के लिए छा जाती है। ओ प्रभु, उस अथाह प्रेम की तरंगों में क्रूस के पास जहां मेरे बचाने वाला मरा, वहां मैं अपने पापों से धुलने को रोया, जहां मेरे हृदय पर लहू लगा, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो, अद्भुत नाम की महिमा हो, जहां मेरे हृदय पर लहू लगा, उसके नाम की महिमा हो। अब जबकि हम अगला पद गाते हैं, यदि बीमार लोग पंक्ति में आ जाएं, ठीक यहां पर प्रार्थना के लिए इधर की ओर, मैं चाहता हूं कि सेवकगण यदि वे यहां आकर बीमारों के लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेंगे। इधर की ओर से आकर सीधे हाथ की ओर पंक्ति बना लें, वे जिनके लिए प्रार्थना होनी है। मैं अद्भुत रीति से पापों से बचाया गया। यीशु बहुत प्रेम के साथ भीतर है, जहां उसने क्रूस पर मेरे पाप उठा लिए, उसके नाम की महिमा हो, उसके कीमती नाम की महिमा हो, उसके कीमती नाम की महिमा हो। वहां मेरे हृदय पर लहू लगाया गया, उसके नाम की महिमा हो। स्वर दें, संसार का सबसे बड़ा वैद हमारे लिए, बहन ग्रेटी, यदि आप स्वर दे सकें। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं उनलूंगा, जी हाँ श्रीमान, क्या आप पूर्वाभास या आशा के साथ आते हैं, बल्कि ये कि आप इस प्रातः चंगे होना जा रहे हैं, क्या आपके हृदय में ये है? वास्तव में गहराई में मेरे मित्र, यदि आप इस प्रकार से आ रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि आपकी चंगाई उतनी ही निश्चित है जितना आपका उद्धार, ऐसी निश्चितता। अब आपकी चंगाई उतनी स्थायी नहीं जितना आपका उद्धार, आपकी चंगाई असफल हो जाएगी। आप हो सकते हैं, यदि आप चंगे हो गए हैं आप फिर बीमार हो जाएंगे। आप आज चंगे हो सकते हैं निमोनिया से, बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हैं, डॉक्टर के द्वारा कह दिया गया, और अगले सप्ताह निमोनिया से मर जाएं। ये ठीक बात है। इस सप्ताह आप तपेदिक से बिल्कुल चंगे हो जाएं, और अब से दो सप्ताह पश्चात तपेदिक से ही मर जाएं। वे परीक्षण में सफल हो जाएं कि आपके शरीर में एक भी कीटाणु नहीं है जो वे पा सकें, और अगले दो सप्ताह में तपेदिक से मर जाएं। ये ठीक बात है, समझे? और जो भी है आपको मरना है, परंतु वे लाभ, दाऊद चिल्लाया, उसके उपकारों को ना भूलो, मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह, और वो सब जो मुझ में है उसका पवित्र नाम धन्य हो, प्रभु धन्य हो, ओ मेरे प्राण उसके उपकारों को ना भूल। उपकारों को, इस यात्रा में क्या उपकार है? जिसने मेरे सारे अपराध क्षमा किए, अपराध वो है जो आप बाहर जाकर करते हैं, और आप जानते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो आपको क्षमा करता है। आप उससे मांगे, वो आपको क्षमा करता है, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, वो जो मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। अब मैं आपके लिए इसे सदा के लिए तय कर देना चाहता हूँ। तब कोई कहता है, भाई ब्रणम, क्या आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं? अब मैं इसे समझदारी और विवेक से कह दूं, मैं कुछ व्यक्तियों को चाहता हूं, कुछ डॉक्टर, कुछ वैज्ञानिक, कहीं भी, मैं उन्हें इस बेदारी में आमंत्रित करता हूं कि इस प्रचार मंच पर आएं और एक जगह भी दिखाएं कि कहीं कोई दिव्य चंगाई से बाहर होकर चंगा हुआ हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, या आप जिसके पास भी चाहें, और मुझे एक व्यक्ति दिखाएं जो बिना दिव्य चंगाई के चंगा हुआ हो। मैं चाहता हूं कि आप वो दवाई लाएं जो चंगा करेगी। मैं चाहता हूं कि एक भी डॉक्टर लाए जो कहे मैं चंगा करने वाला हूं। वो केवल नियंत्रण करने वाला होगा, ठीक है, नियंत्रण, डॉक्टर का नियंत्रण, परंतु परमेश्वर ही केवल चंगा करने वाला है जो चंगा कर सकता है या कभी चंगा किया गया हो या करेगा। यदि हमारे पास कोई दवाई थी जो चंगा कर सकती तो हम यहाँ प्रचार मंच पर एक मनुष्य बना सकते थे दवाइयों से। ये ठीक बात है, हम मनुष्य बना सकते थे इस प्रचार मंच पर, उसे रच सकते थे। जरा सोचें, सारी दिव्य चंगाइयाँ हैं, परमेश्वर की विधि है इसे करने की। अब आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रणम, मेरा घोड़े का क्या है, या अपेंडिक्स जिसके लिए शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन हुआ है, यदि डॉक्टर ने उसे काटा ना होता तो मैं मर जाता। हो सकता है ये सत्य है, परंतु क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर ने आपको कभी भी चंगा नहीं किया है। डॉक्टर ने एक रुकावट को हटा दिया, उसने केवल अपेंडिक्स को काट दिया, ये चीज जो आपको कष्ट पहुंचा रही थी, परंतु उसने इसे कभी भी चंगा नहीं किया। आपने अपना हाथ तोड़ लिया, आप कहते हैं अरे मैंने तोड़ लिया। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, यदि आप अपना हाथ तोड़ लें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं निश्चय ही करूँगा, परंतु वो इसे चंगा नहीं कर सकता। क्या हो यदि मैं कहूँ डॉक्टर जल्दी ही मेरा हाथ चंगा कर दे, मुझे दोपहर बाद अपनी कार पर काम करना है, समझे? क्यों? वो जान जाएगा कि मुझे आवश्यकता है कि मुझे मस्तिष्क की चंगाई मिले। वो कहेगा मैं तुम्हारा हाथ सही बैठा देता हूँ, परंतु कौन चंगाई करता है? आप कहते हैं भाई ब्रणम पेंसिलिन के विषय में क्या है, जब वे मुझे बीमारी के लिए देते हैं जैसे रतिराग और आपको जो कुछ भी है निमोनिया, क्या पेंसिलिन आपको चंगा नहीं करती? नहीं श्रीमान, पेंसिलिन एक जीवाणुरोधक है और जीवाणुरोधक एक मारक है। जीवाणुरोधक मारता है, सारी दूसरी दवाइयाँ मारती हैं, दवाइयाँ निर्माण नहीं करती, ये मारती है। दवाई मारने वाली है, चंगा करने वाली नहीं। मुझे दिखाएं कि दवाई चंगा करती है, मुझे एक दवा दिखाएं जो मारक ना हो, और आपके पास दवाइयाँ नहीं है। दवा मारती है, जीवाणुओं को मारती है, जैसे कि आपके घर में चूहे हों और चूहों की गोली जहर डाल दें और चूहे आपके घर में छेद में से खाते हैं। अच्छा, अब चूहे का जहर चूहे को मारता है, परंतु ये आपके घर की मरम्मत नहीं करता, समझे? पेंसिलिन जीवाणु को मारती है, परंतु परमेश्वर उस स्थान को चंगा करता है जो जीवाणु ने खा लिया था, समझे मेरा क्या अर्थ है? जो भी है, परमेश्वर का वचन, हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन स्वयं को नहीं काटता, ये पूर्णतः सत्य है। ये मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति आकर अपनी उंगली वचन पर रखे, बेदारी में किसी भी समय परमेश्वर के वचन में विरोधाभास दिखाए, कहा ये अपने को काटता है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधा नहीं किया जा सकता, ये वहाँ नहीं है, निश्चय ही ये वहाँ नहीं है। वचन में बिल्कुल भी कोई विरोधाभास नहीं है, सत्यता है। आपको एक विषय मिला, मैं आपको एक पत्र लिख सकता हूँ और आपको कुछ बता सकता हूँ, आपको दूसरा और दूसरा पत्र लिख सकता हूँ। पहली बात आप जान लें, ये दोनों तो अलग अलग विषय बात पर बात कर रहे हैं, समझे? निश्चय ही, परंतु केवल परमेश्वर ही है जो कभी चंगा करता है और चंगा करेगा। आप अब अपना हाथ तोड़ लें तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे फोड़ा है, इस विषय में क्या है? ठीक है, अब यदि वो छोटा स्थान जहाँ पर फोड़ा है, यदि परमेश्वर उस प्रेत के निकालने के द्वारा और जीवन उस फोड़े में से चला जाता है तो वो मर जाएगा। यदि परमेश्वर इसे काट दे तो फिर परमेश्वर को वो स्थान चंगा करना है जिसे डॉक्टर ने काटा है। यदि आप नहीं होते तो लहू बहते बहते आप मर जाएंगे, क्या ये ठीक बात है? क्या हो यदि आप में से अपेंडिक्स को बाहर निकाल दे और परमेश्वर चंगा ना करे तो फिर क्या होगा? आप वहीं मर जाएंगे। आप गली में किसी मुख्य नाली में विघटन डाल दें, आप बाहर जाकर और एक मुख्य नाली में बांध लगा दें और सड़क पर देखें ये भीतरी नाले और देखें कि क्या घटित होता है। आप जाकर मुख्य वाले को बंद कर दें और मुख्य नल के पाइप को काट दें और एक पानी के कपाट को देखिए, ये क्या करता है? वो इसे फाड़ देगा। यहाँ जहाँ से पंप किया जा रहा है, संसार में कोई चीज कोई स्थान मनुष्य की देह के समान है, परंतु आप धमनी को दो में काट दें और यहाँ से बंद लगा दें और परमेश्वर लहू को दूसरी ओर से भेजने का प्रबंध करेगा और फिर से उसी धमनी में ले जाएगा। यदि ये नहीं हुआ एक मिनट के समय में, तो पीछे की ओर लगने वाला धक्का आपके हृदय पर जोर मारेगा, आप चुटकी मारते मर जाएंगे। इस प्रकार से पहली बार आप स्वयं को खुरचते हैं। कौन चंगा करता है? ओ प्रभु, परमेश्वर चंगा करने वाला है। देखिए, आपके पास इस प्रकार की यांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसे तो अलौकिक ही होना है। मेरी दोनों धमनियों में गोली लगी, मेरे दोनों पैरों में गोली लगी, देखा? और परमेश्वर, मैं छोटा पुराना पापी लड़का वहाँ मैदान में मर रहा था। परमेश्वर को मालूम था कि वो मुझसे सुसमाचार प्रचार करवाना चाहता है। उसने लहू को दूसरी ओर से पहुँचाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था, जब तक कोई मुझे कोई नहीं बताता था। ऐसा होता कि मैं नीचे की ओर उस दाग को देखता, समझे? परमेश्वर धमनियों में, आप इसमें मुख्य तोड़ दें तो पंप के स्थान में पंप का यंत्र या सरकार पर ध्यान दें, क्या होता है? मुझे तो मालूम भी न था, जब तो कोई मुझे नहीं बताता। या ऐसा होता कि मैं नीचे की ओर उस दाग को देखता, समझे? परमेश्वर धमनियों में, आप इसमें का मुख्य तोड़ दें तो पंप के स्थान में पंप का यंत्र या सरकार पर ध्यान दें, क्या होता है? ये पीछे की ओर झटका मारेगा और इसे उड़ा देगा, निश्चय ही यही करेगा। पानी इस प्रकार से जोर मारता है कि पीछे धक्का मारेगा, परंतु परमेश्वर दूसरा मार्ग बनाता है और घूम कर जाता है। ये कौन करता है? ये कौन सी बुद्धि करती है? मुझे दिखाएं कि जल संयंत्र ये करेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये महान सृष्टि करता है जो ये करता है। हाँ, वास्तव में कौन एक पेड़ को दूसरे से भिन्न बनाता है? कौन चिड़ियों के रंगों को एक दूसरे से भिन्न बनाता है? उसकी आवाज को कौन भिन्न बनाता है? हम जो हैं, किसने बनाया है? एक बुद्धि है, ये परमेश्वर है। अब डरे नहीं, उसने बनाया, ये उसकी प्रतिज्ञा है। ये भाई बहनम नहीं है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। मैं ही प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उस पर तेल मलकर उस पर प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और जब ये आज्ञा पूरी की जाती है तो इसे उसी प्रकार से स्वीकार करें जैसे आप प्रायश्चित करते हैं, और यहाँ बपतिस्मा लेते हैं, सीधे चले जाते हैं और कहते हैं ये पूरा किया गया कार्य है, ये हो गया, समझे? परंतु हम किसी विशेष महान आश्चर्यकर्म घटित होने की राह देख रहे हैं। ये तब होता है जब उसे घटित करने के लिए पर्याप्त विश्वास होता है। जो भी है, ये घटित होगा धीरे धीरे। देखिए यीशु ने क्या कहा यहाँ अनुवाद में, जब उसने पहाड़ के विषय में कहा, एक एक करके ये घटित होगा। यदि आप इस पहाड़ से हटने को कह दें और अपने हृदय में विश्वास कर लें कि ये घटित होगा, कहा धीरे धीरे ये घटित होगा, समझे? ये होगा। अब आप बीमार हैं, आप में से बहुत से बुरी हालतों में मर रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ रखा है। ये मनुष्य बहुत ही बीमार है। कैंसर भयानक चीज है, परंतु परमेश्वर कैंसर को चंगा कर सकता है। ओ प्रभु, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ कितने हैं जो कभी, क्या यहाँ कोई है जो कैंसर से चंगा हुआ हो? अपने हाथ को उठाएं और देखिए, पूरी कलीसिया में है, समझे? निश्चय ही ये सब जगह हम उन्हें लाए हैं क्योंकि परमेश्वर चंगा करता है। अब वहाँ बाहर आप सब सराहना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सिरों को झुकाएं, चाहता हूँ कि प्रार्थना करें। भाई नेविल यहाँ आए, अब जैसे कि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि प्राचीन लोग यहाँ आ जाएं ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और जब आप यहाँ समीप आते हैं, अब ये करें, जब आप यहाँ समीप आते हैं तो अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, और बस मेरे वचन नहीं परंतु परमेश्वर का वचन, इसके लिए बस अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। ये तय हो गया, यही है, ये हो गया। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसके वचन ने ऐसा कहा है, ये असफल नहीं हो सकता। मुझे चिंता नहीं मुझे कैसा लगता है, मैं बढ़ रहा हूँ, जो भी है कह रहा हूँ ये सत्य है। देखिए क्या घटित होता है, परंतु देखिए, यदि हम पीछे खड़े होकर कहते हैं इस प्रकार से प्रार्थना पंक्ति में आए, कभी भी घटित नहीं हुआ, बस